कुंज बिहारी जय।
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधवा कुंज बिहारी,
जय राधा
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय जगन्नाथ।
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, निताय गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल, निताय गौर हरिबोल ताई गौर प्रेमानंदे, जय जय जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, तब मुझे डॉक्टर श्याम मोहन जी को बताना है कि रिकॉर्डिंग चालू रहता है कि बंद हो जाता है।
रिकॉर्डिंग चालू है प्रभु
जी। वेरी गुड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से आप सबका श्री जगन्नाथपुरी के तीसरे सत्र में स्वागत है। अभी जगन्नाथ भगवान के क्षेत्र में एक बात हमारे सनातन गोस्वामी बताते हैं, वो मुझे बताना आपको बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर शास्त्रोक्त बात है। वो कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति। इसका मतलब प्रेम जो है वो संकुचित हो जाता है, प्रेम संकोच में आ जाता है जब ऐश्वर्य और ज्ञान प्रधान होता है। लुकिंग एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन पुरी, सम कॉल हिम वासुदेव एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा एज इन चतुर्व्यूह परफॉर्मिंग लीला इन द्वारका। मतलब क्या हुआ कि जगन्नाथपुरी के ऐश्वर्य को देखकर कुछ लोग समझते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण के पहले विस्तार बलराम जी हैं, बलराम जी फिर चतुर्व्यूह में विस्तारित होते हैं, उसमें प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव, तो ये चतुर्व्यूह में जो वासुदेव हैं वो कहते हैं इसके ही विस्तार जगन्नाथ जी हैं जो द्वारका में लीला कर रहे हैं। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि माधुर्य रति ये गोकुल में प्राप्त होती है, वृंदावन में प्राप्त होती है, बरसाने में प्राप्त होती है, लेकिन द्वारका मथुरा वैकुंठ ये ऐश्वर्य प्रवीण या ऐश्वर्य प्रधान है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ऐश्वर्य माधुर्य युगल मिलन ऐ जगन्नाथ। इसका मतलब ये हुआ, इस श्लोक को बताता हूं मैं, श्लोक सुंदर श्लोक है बहुत। श्री कृष्ण देवस्य सदा प्रियं तत क्षेत्रम यथा श्री मथुरा तथैव ततपारमेश्वर्य भर प्रकाश लोकानुसारी व्यवहार रम्यम। तो श्री कृष्ण भगवान इसके बारे में सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम ने बताते हैं कि पुरी में ऐश्वर्य से भरपूर संपूर्ण होने पर भी माधुर्य बहुत ही ज्यादा प्रभावी और प्रधान जगन्नाथपुरी में है। तो जगन्नाथ राधा भाव विदुर हैं, राधा भाव में विरह में हैं, और चैतन्य कृष्ण भाव विदुर में हैं, यानी जगन्नाथ भगवान राधा के लिए विरह में हैं और चैतन्य भगवान कृष्ण भाव के लिए विरह में हैं। दोनों एक साथ में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। राधा भाव सिंदूरे भासमान, ये और एक बात सुंदर बात कही गई है, वो ये है कि जब जगन्नाथ जी का वो लकड़ी का दारू ब्रह्म प्रकट हुआ ना, तो उसका अर्थ यह है कि राधा भाव विरह भाव के सागर में जगन्नाथ जी तैरते हैं, तैर रहे हैं, वहां से प्रकट हो रहे हैं, एज इफ ही वॉज अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ राधा भाव। तो ये सारी बहुत सुंदर सुंदर रसिक बातें हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जयदेव गोस्वामी का ये जो मैंने प्रसंग बताया था, इसका भी वर्णन यहाँ दिया है कि राधे राधे देही पद पल्लव उदारम, राधा रानी के चरणों के चरणों की मांग कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो एक कथा आपको बताने के रह गए, तो जो पहले मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद में फिर ये कथा करूंगा आगे वाली। एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार्कंडेय सरोवर तक हम पहुंचे ही नहीं, मार्कंडेय सरोवर गायब हो गया बीच में, तो मार्कंडेय सरोवर पहुंचते हैं अभी, क्योंकि ये पंच महाविधि से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कंडेय सरोवर। हरि बोल। और एक है कपालेश्वर महादेव, दोनों बच गए, ठीक है चलो। तो ये पंच तीर्थ और पंच महादेव में से एक है कपाल मोचन महादेव या कपालेश्वर महादेव। ऐसी एक कहानी नासिक में भी है, वैसी ही कहानी यहाँ पर भी है। तो एक बार शिव जी देख रहे थे कि ब्रह्मा जी के पांच मुख हैं और पांचवा मुख जो है वो प्रजल्प कर रहा है, चार मुख वेदों का गायन कर रहे हैं, पांचवा मुख जो है वो प्रजल्प कर रहा है। तो शिव जी ने नाराज होकर अपने त्रिशूल निकालकर पांचवा शीश छाट दिया, कट कर दिया उसको, लेकिन वो शीश है ना उनके त्रिशूल पे अटक गया। और कहते हैं कि वो जब भी वो त्रिशूल लेकर पूरे विश्व में घूमे, लेकिन जगन्नाथपुरी आते ही वो त्रिशूल के ऊपर का जो सर था वो नष्ट हो गया, मतलब ब्रह्म हत्या के पातक से वो मुक्त हो गए। तो वो महादेव यहाँ पर विराजमान हैं जिनका नाम है कपाल मोचन महादेव, यानी कपाल पाप से मोचन हो गया उनका, मुक्त हो गए वो। तो ये मंदिर भी एकदम जगन्नाथ मंदिर के एकदम पीछे हाँ व्याघ्र द्वार के पास में, और सिंह द्वार से अगर अंदर जाएंगे ना तो वहाँ से जो उधर लाइन से खाजा के दुकान मिलते हैं वो उसको क्रॉस करके पहली गली जब आती है तो उसके ही मुंह पे ये मंदिर है। ये भी 40 फीट नीचे है, जमीन के 40 फीट नीचे है। देखिए केवल सीढ़ी का फोटो निकाला मैंने, बहुत अंदर जाना पड़ता है। तो कपाल मोचन महादेव है। फिर उसके आगे हम जाते हैं तो ये आ गया मार्कंडेयेश्वर महादेव। पहले हम दर्शन कर लेते हैं और इसमें आप स्नान कर लीजिए, तुरंत आचमन कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम मंत्र बोलता हूं मैं, त्रिलोचन नमस्तेस्तु, नमस्ते शशिभूषण, त्राहि माम त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। त्रिलोचन नमस्तेस्तु, नमस्ते शशिभूषण, त्राहि माम त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। तो ये महादेव को हम नमस्कार करते हैं जो शशिभूषण हैं, जिनके शीश पर शशि अलंकार के रूप में विराजमान हैं। तो ये मार्कंडेय सरोवर है और ये मार्कंडेय सरोवर में जगन्नाथ जी के विग्रह का छोटा सा मंदिर भी है, उसका भी दर्शन कर लो। और मार्कंडेश्वर महादेव का फोटो अवेलेबल नहीं है, निकालने देते नहीं है। और ये मार्कंडेश्वर मंदिर का एंट्रेंस है। अभी देखिए कहानी इनकी ऐसी है कि ये लक्ष्मी देवी बता रही है यमराज को और ब्रह्मा जी महाराज को। क्या बता रहे हैं कि मार्कंडेय ऋषि इनको भगवान से 7 कल्प तक जीने का वरदान प्राप्त हो गया था। 7 कल्प यानी क्या होता है, एक कल्प में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, और ये चारों मिलकर 43,20,000 ईयर बनते हैं। इसमें कलयुग 4,32,000 का है, इसको 10 गुना गुणित करेंगे तो 43,20,000 साल आएंगे। ये सब मिलकर एक कल्प बनता है, एक दिव्य युग बनता है। तो ऐसे 7 दिव्य युगों तक उनको, 7 कल्पों तक जीने का वरदान प्राप्त हुआ था। अभी वरदान प्राप्त हुआ था तो पहले कल्प में प्रवेश किया, तो उनको पता नहीं था कि वो पहले कल्प के बाद में दूसरा कल्प शुरू होने के पहले होता क्या है उनको मालूम नहीं था। तो पहले कल्प को समाप्त होता है ना, जब पहले 43,20,000 ईयर समाप्त होते हैं ना, तो एक जल प्रलय होता है, उसको मिनी प्रलय कहते हैं। वो जल प्रलय में ब्रह्मा जी की एक रात तक घनघोर वर्षा होती है। वे हमारे मीरा रोड में अभी 4.5 महीने लगातार वर्षा चल रही है, कल भी बहुत धुआंधार वर्षा हुई थी, तो हम लोग कितने परेशान होते हैं। लेकिन हम जानते नहीं है कि प्रलय की वर्षा मतलब क्या होता है। कहते हैं पृथ्वी पर 1,000 किलोमीटर तक जल जमा होता है। हमारे यहाँ पर कमर तक जल जमा हो गया तो हम परेशान हो जाते हैं। 1,000 किलोमीटर तक जल जमा होता है और सारी जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है ब्रह्मा की एक रात भर। फिर ब्रह्मा का जब दिन होता है तो वापस सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये जो ब्रह्मा की रात वाला जो हिसाब किताब है वो मार्कंडेय मुनि को पता नहीं था। तो एक युग समाप्त हो गया और मिनी प्रलय शुरू हो गया, तो इतना जोरदार वहां पर लहरें आने लगी, इतनी हजारों किलोमीटर की लहरें निकलने लगी। उसमें ठंड थी, उसमें कड़ी ठंड थी, भूख प्यास और कष्ट से ये त्रस्त हो गए पूरी तरह से। और यहाँ वहाँ से डोल रहे थे, यहाँ से वहाँ फेंका जा रहा था उनको। अभी उनको न मरने का वरदान था, जीने का वरदान तो जीना ही पड़ा। तो मृत्यु आना अच्छा था, लेकिन वो मृत्यु नहीं आती थी क्योंकि वरदान था उनको 7 कल्प तक जीने का। तो उसमें वो इतने तड़प रहे थे, इतने त्रस्त हो गए थे, तो उसमें उनको एक ना समुद्र में, बीच समुद्र में एक पूरा टापू दिखाई पड़ता है, इसको हम आइलैंड कहते हैं। तो उसमें एक बड़ा वृक्ष था और वृक्ष में कई पत्ते थे, बहुत सारे पत्ते थे, और उसके एक पत्ते पर एक बालक, छोटा सा नीला बालक जो है वो लेटा हुआ था और वो जल के अंदर था, लेकिन जैसे बोट की तरह आराम से पड़ा हुआ था और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। इसको देखकर ना बहुत मार्कंडेय मुनि को आश्चर्य हो गया, और जो आश्चर्य हो ही रहा था तो अचानक मार्कंडेय मुनि को वो नाक में खींच लेते हैं, और नाक में खींचने के बाद मार्कंडेय मुनि को भगवान के पेट में जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान का ही दर्शन था, वो बाल बाल दर्शन था। तो उनके पेट में उनको सारे ब्रह्मांड नजर आते हैं, सारा क्रिएशन दिखता है, और फिर भगवान उनको वापस नाक से बाहर निकालते हैं। तो उस समय वो वापस बालक को देखते हैं, तब उनको ध्यान में आता है कि बालक नहीं है, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान है। तो वो उनके पास जाते हैं जल में और पूछते हैं कि ये जो टापू है, आइलैंड है, ये क्या है? तो भगवान बताते हैं कि ये मेरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और यहाँ पर जो भी रहता है वो कभी भी जन्म मृत्यु का कष्ट सहन नहीं करता है, कभी भी माता के गर्भवास का कष्ट सहन नहीं करता है, तो आप इस टापू पर रह सकते हो। तो उस भयंकर प्रलय काल के कष्ट से मुक्ति कैसे मिली? तो भगवान ने उनको अपने पुरुषोत्तम क्षेत्र टापू जो है, जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है, उसके अंदर उनको निमंत्रण दिया। तो फिर वो उसके अंदर चले गए, और जो वो तो था ना, वो कल्पवृक्ष, उसके यहाँ पर उन्होंने भजन किया, और उसके बाद में वो आगे जो टोटा गोपीनाथ आज जगह पर है ना, वहां पर वो भजन करने गए, और उन्होंने बहुत ही दिव्य तप किया। उसके बाद में उनका मन जो है ना, वो एक तरह से नमन हो गया, मतलब मन नष्ट हो गया, भगवान के चरणों में लीन हो गया, उनको आजू बाजू में क्या हो रहा है उसकी अनुभूति नष्ट हो गई। ही बिकेम टोटली ओब्लिवियस टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। उसके बाद में उसका तप को देखकर शिवजी आकर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, इतना दिव्य तप कर रहे थे वो। तो शिवजी वहां पर प्रकट हो गए, तो प्रकट हो गए तो इनका ध्यान ही नहीं था, क्योंकि बाह्य चेतना नष्ट हो गई थी। तो शिव जी इनके हृदय में प्रवेश कर गए, तो हृदय के अंदर शिव जी ने उनको दर्शन दिया। कैसा दर्शन दिया? तीन आंखें, त्रिनेत्र, और 10 भुजाएं, और क्या क्या है भुजा में? भुजा में त्रिशूल है, एक में धनुष है, एक में बाण है, एक में तलवार है, एक ढाल है, एक में जपमाला है, एक में डमरू है, एक में खोपड़ी है, और एक में परशु है, और वो व्याघ्रांबर पहने हुए थे, यानी कि टाइगर स्किन पहने हुए थे। ऐसा सुंदर दर्शन दिया तो उनका ध्यान भंग हो गया, और जब आंख खोली तो वही दर्शन उनको आंखों के सामने भी प्राप्त हुआ। तो शिवजी बड़े प्रसन्न थे, और उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो मार्कंडेय मुनि ने जो वरदान मांगा है, वो सब पर सबको उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। मार्कंडेय मुनि ने वरदान मांगा कि मुझे परम पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान के लिए कभी भी कम न होता हुआ भक्ति चाहिए, भक्ति और श्रद्धा और आसक्ति चाहिए भगवान की सेवा के लिए, और भगवान के भक्तों के लिए भी वैसा ही आकर्षण, आसक्ति और सेवा का भाव मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये शिवजी जो है ना, वो बड़े प्रसन्न हो गए। तो फिर मार्कंडेय मुनि ने शिवजी का भी आराधना किया, उसके बाद में शिवजी का पूजन किया, वहां पर शिवलिंग स्थापन किया, और वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहे, और उन्होंने यहाँ पर रहकर मार्कंडेय, अपने मार्कंडेयेश्वर महादेव का सेवा किया। तो ये मार्कंडेय सरोवर के पास में है, तो मार्कंडेय सरोवर का दर्शन कीजिए। आप देखिए, ये आपके पास में मार्कंडेय सरोवर है, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो इस मार्कंडेयेश्वर महादेव का और एक महात्म्य ऐसा है कि वहाँ पर एक बालक था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बालक है ना, वो बचपन से उसको काफी भगवान के लिए आकर्षण था, शिव जी के लिए आकर्षण था। तो उसका ऐसा था कि उसके इसके भाग्य के अनुसार बचपन में मृत्यु लिखी थी उसके अंदर। तो उसके पिताजी ने कहा कि आप इस शिवलिंग को पकड़ के रहो तो फिर आपको यमराज टच नहीं कर सकते हैं। तो यमराज खुद आए थे उसको लेने के लिए, उसका जीवन काल समाप्त हो गया करके। तो यमराज खुद आए, और इन्होंने अपने पिताजी के आदेश के अनुसार वो मार्कंडेश्वर महादेव को आलिंगन देके पकड़ के रखा। यम ने अपना पाश भेजा, यम पाश, उसको बांध लिया और खींचने लगा। तो यहाँ पर यम पाश खींचा जा रहा है, और बालक से मार्कंडेश्वर महादेव के लिंग को पकड़ के रखा है। उसके बाद में वो लिंग आधा टूट गया, लेकिन फिर भी बालक को यमराज खींच नहीं पाए। उसके बाद में शंकर भगवान प्रकट हो गए, और शंकर भगवान तो यमराज उनको पूछते हैं, तो शंकर भगवान जब प्रकट हो गए तो यमराज ने उस बालक को मुक्त कर दिया और शंकर जी ने अपने शरण में रख दिया। तो ये भी दर्शन इस मंदिर में है, उसके थोड़ा सा लिंग टूटा हुआ है, ये भी आगे दर्शन मिलता है, लेकिन फोटो निकालना मना है। इस प्रकार से आपको मैं पहले ना वो पांच महादेव का एक बार बता देता हूँ, ताकि ये पांच महादेव पांच तीर्थ का कथा जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो पांच तीर्थ और पांच महादेव, इनका दर्शन किए बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा सफल नहीं होती है या परिपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए आप ये पांच तीर्थ और पांच महादेव एक बार समझ लीजिए। पहले है कपाल मोचन महादेव, दूसरे है मार्कंडेश्वर महादेव, तीसरे हैं लोकनाथ महादेव, चौथे हैं यमेश्वर महादेव और पांचवे है नीलकंठेश्वर महादेव। और ये पांच पांडवों के पांच रूप हैं जो पांच दिशा में धाम की रक्षा करते हैं। और पांच तीर्थ कौन से हैं? एक है महोदधि जो सागर है, दूसरा है मार्कंडेय सरोवर जो मार्कंडेश्वर महादेव के पास में ही है, तीसरा है श्वेत गंगा जहाँ पर सार्वभौम जी का निवास स्थान है, मत्स्यावतार और श्वेत माधव का विग्रह है, चौथा है रोहिणी कुंड जो ठीक जगन्नाथ जी के मंदिर में ही है और कल्पवट के नीचे, और पांचवा है इंद्रद्युम्न सरोवर। और इसमें मजे की बात यह है कि नीलकंठेश्वर महादेव और इंद्रद्युम्न सरोवर लग लग के हैं, मार्कंडेश्वर महादेव और मार्कंडेय सरोवर एकदम बाजू बाजू में है। हरे कृष्णा। और रोहिणी कुंड जो है वो ठीक मंदिर के अंदर है। और तो एक बार दर्शन कर लीजिए, ये है नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन, इसमें एंट्रेंस है, यहाँ पर एंट्रेंस इंद्रद्युम्न सरोवर के पास में, ये उसका एकदम पास में का एंट्रेंस है। और ये नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन है, अद्भुत दस भुजा वाले शिव जी हैं, त्रिनेत्र शिव जी हैं, बिल्कुल ठीक से देखिए। उसके बाद ये कपालेश्वर महादेव है, कपाल मोचन महादेव, फिर ये है मार्कंडेश्वर महादेव जो अभी आपने देखे, उसके बाद में है ये लोकनाथ महादेव, ये लौकी के आकार के, मैंने बताया था आपको प्रभु रामचंद्र को लौकी के आकार का शिवलिंग दिया गया था, ये हमेशा जल के अंदर रहते हैं। फिर ये है यमेश्वर महादेव, यमेश्वर महादेव धर्मराज युधिष्ठिर का स्वरूप है, जमीन के अंदर 50 फुट के नीचे है, इनके यहाँ पर हरिहर विजय मूर्ति है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण हर अमावस्या को महोदधि में स्नान करके अपना विवाह लीला करते हैं। ये पंचतीर्थ, और लास्ट में पंचतीर्थ में सबसे पहले रोहिणी कुंड है जो मंदिर में है, उसके बाद श्वेत गंगा है, उसके बाद मार्कंडेय सरोवर है, उसके बाद महोदधि समुद्र, और उसके बाद इंद्रद्युम्न सरोवर। हरे कृष्णा। इस तरह से हम अभी आपको आखिरी हमारे आज के विषय में ले जाते हैं, जो विषय का नाम है जगन्नाथ भगवान का किचन। तो ऐसा है कि जगन्नाथ जी का जो प्रमुख नारद मुनि का उद्देश्य था वो ये था कि जगन्नाथ जी का दर्शन लोगों को प्राप्त हो जाएगा, तो दर्शन प्राप्त होते ही लोगों के मन में प्रीति जागृत होगी, एक अद्भुत प्रकार की अनोखी प्रीति निर्माण होगी, प्रेम निर्माण होगा, जिसके कारण जीव बड़ी आसानी से मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकेगा, भौतिक जंजाल से मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएगा। तो यही तक उनका जो महात्म्य है वो रुकता नहीं है, उनका दूसरा एक महात्म्य है दर्शन से, दर्शन के साथ साथ उनके प्रसाद का। तो ये जगन्नाथ जी का किचन है जो आपको देख रहे हैं ना, इस लेवल पे आपको सबसे पहले भी हमने दिखाया था ऊपर से, तो बहुत ऊंचाई पर पहाड़ पर 2 एकड़ का इनका किचन है। और किचन की कैसी महिमा है देखिए, ये किचन के अंदर ना 752 चूल्हे हैं, 752 चूल्हे हैं, और उसमें 5000 कुक्स जो है ना वो काम करते हैं, एक समय पर 1000 कुक रहते हैं, उसके अंदर 500 कुक जो हैं वो मेन कुक्स हैं, और 500 कुक के साथ में 200 कुक उनके डायरेक्ट असिस्टेंट्स हैं, और 300 कुक जो हैं वो उनका क्या कहते हैं उनको, उनको सब्जी काटने में दाल भिगोने में सब मदद करते हैं। तो ऐसे 500 रसोईया मेन फायर वर्क करते हैं, फायर में काम करते हैं, और 300 सब्जी काटते हैं, दाल गरम दाल धोते हैं, चावल धो के देते हैं, और 200 जो है वो प्रत्यक्ष कुक्स को जाकर मदद करते हैं। इनका जो रसोई है वो प्योर लकड़ी से बनता है, सब चूल्हे जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, और रथ यात्रा में जो रथ बनता है वो रथ की लकड़ी पूरा निकाल कर साल भर के रसोई में काम आती है। इस किचन में 56 भोग बनते हैं, और 56 भोग का मतलब क्या है कि 56 हर बार ऑफरिंग नहीं होता है, 56 प्रकार का भोग पूरे दिन में बनता है, और जो जो भोग जैसे जैसे बनते जाता है वैसे वैसे वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो इसमें एक विशेषता है कि समझो अभी विश्व भर में कभी भी हम किचन में जाएंगे ना भगवान के, तो बड़े बड़े भगवान में खाना बनाते हैं, लेकिन एक थाली होती है, थाली में वाटियां होती है, कटोरी होती है, उसके अंदर हम लेते हैं चावल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, मिठाई लेते हैं, सब्जी चटनी लेते हैं, पकौड़ा लेते हैं, और वो सजा के उनको तुलसी रख के भोग लगाते हैं, और फिर उसके बाद में महाप्रसाद के रूप में उसको बांटते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी की विशेषता यह है कि बड़े बड़े मटके पर उनका भोग बनता है, बड़े बड़े मटके वो सीधे चूल्हे पर रखते हैं और वही वही मटके में जाके उनको भोग लगाते हैं, ये उनकी विशेषता है। तो आप देखेंगे जगन्नाथ के रास्ते पर हमेशा बड़े बड़े मटकों का वो ट्रक टेम्पो जाते रहता है, हमेशा वो मटकों का सप्लाई किचन में होते रहता है कॉन्स्टेंटली, और जब ये भोग बनता है ना तो ये जगत जगत में ऐसा ही एक ही मंदिर है जहाँ पर भगवान को भोग लगाने वाले लोग जो हैं, मतलब जो बनाने वाले रसोइया हैं, वो ना पूरा खा पी के आ जाते हैं, वो खा के पी के पूरा मुंह में पान रख के आते हैं ताकि मुंह के बदबू ना आ जाए, और बात भी नहीं करते कुछ, और पेट भर के आते हैं क्योंकि अन्न पर कोई वासना नहीं होनी चाहिए, अन्न को देखकर खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसे पेट भरकर उनको भेजते हैं, और वो टर्न बाय टर्न आते हैं, और वो पारिवारिक रूप से वंश 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 के रूप में ये भगवान के किचन में सेवा करते हैं। हम जो जाते हैं ना अंदर किचन को देखने के लिए, कोई बात नहीं करता है ना, एक दूसरे से बात करता है ना हमसे बात करते हैं, अपने अपने काम में इतने मग्न रहते हैं, बहुत एकदम मग्न रहते हैं। तो उसमें और एक विशेषता है, जब भगवान का भोग तैयार होता है और वो कुछ आइटम 7-8 आइटम समझो बन गए मटके मटके में, तो फिर वो भोग लगने का समय होता है, तभी उसका एक नियम है कि सूर्य किरण उस पर नहीं पड़नी चाहिए, अगर सूर्य किरण पड़ती है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा, कोई कुत्ता या पंछी, कोई निम्न नीच जीव जो है, नीच योनि का, उसकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए उसके ऊपर, इसलिए पूरा ढकते हैं उसको, और जो किचन है उधर से भगवान के जो अंदर का गर्भगृह का रास्ता है वो परिक्रमा से जाता है ना, तो फिर परिक्रमा को रोक देते हैं, पूरा बंद करते, कॉर्डन करते हैं, फिर पहले वाद्य निकलता है बजाने वाले, फिर बजाते हैं ढोल वगैरह मस्त की, और उसके आगे फिर गाने वाले लोग निकलते हैं, वो जो गाते रहते हैं, उसके बाद भोज भोज निकलता है पीछे, जो भी बनाया हुआ है बड़े बड़े बर्तन में लकड़ी मिट्टी के, फिर वापस सिक्योरिटी गार्ड पीछे रहते हैं, और ऐसे इसमें इत्मीनान से वो भोग अंदर पहुंचता है, और वैसे के वैसे भगवान के सामने उसको भोग लगाने को रखते हैं। तो मुझे अभी याद आ रहा है कि इंद्रद्युम्न महाराज ने ना एक वरदान और भी मांगा था कि भगवान आपको इतना यहाँ पर भोजन लेना है कि दो भोजन के बीच में आपका हाथ सूखना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा था। बिटवीन द टू मील्स आप हाथ धोते ना तो हाथ भी सूखना नहीं चाहिए, वो गीले हाथ से दूसरा भोजन आना चाहिए आपका तुरंत। ऐसा सुबह से 3:30 बजे चालू होता है और रात को 11:30 बजे तक भगवान को कंटिन्यूअस भोग लगाते हैं, उसमें उत्सव के दिन भगवान सोते भी नहीं है और रात में भी खाते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी खाते हैं कंटिन्यूअस। हमारे जगन्नाथ जी हॉस्पिटल में भी ऐसे ही है, सुबह 6 बजे घंटी बजना आरंभ होता है, रात को 10 बजे तक घंटी बजती रहती है, कभी ये डाइट कभी वो डाइट, कभी बटाटा वटा, कभी डोसा, कभी खाना, कभी पीना, कभी सूप, कभी सॉल्टलेस, कभी डायबिटिक डाइट, ऐसा 14 प्रकार का डाइट है, और खाना नॉर्मल भी है, नाश्ता भी है, लंच भी है, डिनर भी है, स्नैक्स भी है, सारे प्रकार का, जो जगन्नाथपुरी का ही भाव हमारे किचन के अंदर, जगन्नाथ जी बैठे हैं बड़े हष्ट पुष्ट हैं, एक घंटी रहती है, डब्बा भर के तुलसी रहती है, और लगातार जैसे बनता है वैसे भोग लगते रहता है जगन्नाथपुरी में, वैसे रहता है, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, एक अंदाजा टाइम है, 2 2 घंटे का रेंज है उसके अंदर, लेकिन कभी भी लगा सकते हैं उसको। ऐसे बड़े धूमधाम से उनको भोग लगाते हैं, और एक चमत्कार है उनके किचन में, 752 चूल्हे हैं मिट्टी के बने हुए, और उस पर कभी कभी 4 कभी कभी 7 मटके रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, चावल पक रहा है, सब्जी पक रही है, कुछ ना कुछ पक रहा है उसके अंदर। लेकिन चमत्कारिक बात यह है, आप सब जानते हैं कि सबसे नीचे वाला पात्र पहले पकना चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर वाला पहले पकता है, उसको उतार के नीचे रखते हैं, फिर दूसरा पकता है, फिर तीसरा पकता है, फिर चौथा, फिर लास्ट वाला जो अग्नि के संपर्क में है वो लास्ट में पकता है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसको समझा नहीं पाया है कि ऐसे कैसे होता है, हाउ इट इज हैपनिंग, नोबडी नोज. लेकिन ये चमत्कार हर रोज का चमत्कार है और उनके लिए कोई चमत्कार नहीं है, वो तो उनके रोज की बात है. तो मैंने एक बार अनवसर काल में हीरा पंचमी के बाद में मैं किचन में गया था, तो वास्तविक उस समय पर सारा चूल्हा तोड़ देते हैं और सारा चूल्हा में दो तीन दिन चला गया उसके अंदर, तो वो हीरा पंचमी के बाद में एकादशी तक पूरे नए चूल्हे बनाते हैं. पूरा खाना पीना बंद है ना, वहाँ पर रसोई तो बंद है, रसोई तो वहाँ बन रही है, हाँ, गुंडीचा मंदिर में, गुप्त वृंदावन में. आनंद बाजार नाम की एक बहुत सुंदर वस्तु है, जो जो भगवान का भोग लगता है ना वो सब बाजार में आता है. इतने प्रकार के व्यंजन, नाम भी पता नहीं उसका, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, मिठाइयाँ होती है, क्या क्या होता है, तो वो सब मिलता है वहाँ पर और कभी भी वो समाप्त नहीं होता है. दिन भर आप जाओ कभी भी खुला रहता है. तो आनंद बाजार भी अनवसर के टाइम पे शिफ्ट होता है, किधर, गुंडीचा में. और कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से भी कई गुना अधिक स्वादिष्ट भोजन वहाँ मिलता है 9 दिन के बीच में, विशेष विशेष प्रसाद, प्रेम का प्रसाद. तो आनंद बाजार एक बहुत ही आकर्षक चीज है. जगन्नाथपुरी गए और आनंद बाजार नहीं गए तो आपने कहाँ गए फिर आप, ऐसा प्रश्न लोग आपको पूछेंगे. वहाँ का प्रसाद वहाँ खड़े खड़े खरीद के खाना होता है, ये भी उसका आनंद है. तो ऐसे चमत्कारिक चीजें हैं और ये सब किचन की इंचार्ज कौन है, लक्ष्मी देवी. और लक्ष्मी देवी भगवान को बड़े विविध विविध प्रकार के व्यंजन बना के भोजन लगाती है, भोजन करती है. वास्तव में वो राधा रानी है, क्योंकि भगवान ऐश्वर्य भाव में इसलिए वो लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो जाती है. तो यहाँ पर और एक नियम है, जगन्नाथपुरी के निवासी, हम लोग नहीं, हम लोग तो गौड़िया वैष्णव हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी के निवासी जो है ना, बाय बॉर्न वहाँ के धाम वासी, वो एकादशी का उपवास नहीं करते. जगन्नाथ के मंदिर के पीछे एक छोटे से मंदिर में एकादशी देवी को उल्टा उल्टा टांग के लटका के रखा है. एक्चुअली आप जाके देखेंगे, आपको बैठकर झुककर देखना पड़ेगा. छोटा सा विग्रह है मंदिर के पीछे, छोटा सा मंदिर है और उसको टांग कर रखा है उल्टा, कोई भी उपवास नहीं करना है, यहाँ पर सब लोग खाना है पीना बस. तो हमने यात्रा किया था, तो यात्रा के बहुत लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, हंस रहे हैं देखो. तो सबको पूछा एंड में फीडबैक में, क्या आपको अच्छा लगा, सब जगह गए, सब अच्छा कथा सुना, सब कुछ सुना, लेकिन बोलते हैं मुझे दर्शन और प्रसाद, प्रभु जी क्या कहें, दर्शन और प्रसाद का तो हम लोग वर्णन ही नहीं कर सकते. और हमने भी क्या किया था आइडिया कि लोगों को ना जगन्नाथ का, देखो जगन्नाथ का क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, नारद मुनि का वरदान से हुआ है. नारद मुनि ने क्या बोला था कि आपको खाली देखना है बस, आपको देखने के लिए लोग आएंगे ना, इतना दूर से आएंगे, आपके सामने खड़े रहेंगे और आपको देखेंगे ना, बस उतना ही काफी है. तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो जल्दी जल्दी में और गर्दी गर्दी में नहीं होना चाहिए. कैसे, जल्दी जल्दी में और गर्दी गर्दी में नहीं होना चाहिए, तो आराम से होना चाहिए. हमने क्या किया, 20-20 का बैच बनाया था और 20-20 का बैच बना के वो छोटा पांडा को दिन भर एंगेज किया था. उसको कहा था एक एक घंटा में हमारा एक एक बैच आ जाएगा, इतना सिस्टमेटिक किया था. एक बैच पहुंचेगा, एक घंटा में पूरा अंदर घुमाएगा, तब तक दूसरा बैच रेडी, और दूसरा बैच बाहर आ गया वो जाके प्रसाद खाने का. उसके बाद तीसरा बैच, चौथा बैच, सुबह 9 बजे शुरू किया था, शाम को 5 बजे तक ना 20-20 का बैच ये लीला चलती रही. और बड़े इत्मीनान से उनको अंदर गर्भगृह में लेके भगवान के सामने खड़े रह के ना प्रेम का दर्शन कराया. तो वो 2 दिन तो एकदम पूरे से अति आनंद में गए सबके, अति अति आनंद में. तो और एक वहाँ पर लीला हुई हमारी यात्रा में, वो एकादशी आई बीच में हमारी यात्रा में. तो अभी तो जगन्नाथपुरी वासी तो एकादशी नहीं करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहे 18 साल, तो उन्होंने कड़ी एकादशी किया था. तो हम लोग एकादशी तोड़ नहीं सकते वहाँ जाके, हम तो गौड़िया वैष्णव हैं, तभी क्या करें. एकादशी आया तो एकादशी का वो सामा, राजगिरा और कुछ भी नहीं मिलता है, तो हमारे रवि शिंदे बेचारे परेशान हो गए, अभी क्या करें. लेकिन करना तो है, हमने कहा एकादशी उपवास तो करना है आपको. तो बेचारे 26 दुकान में गए, एकदम बॉर्डर तक गए, जगन्नाथपुरी के बॉर्डर तक गए, 26 दुकान में जाकर थोड़ा 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 करके सामान इकट्ठा किया और कैसा भी करके एकादशी संपन्न किया हमने वहाँ पर. एकादशी पूरा संपन्न किया, उस दिन महाप्रसाद नहीं खाया जगन्नाथ जी का. वो भी एक अनोखी याद है जगन्नाथपुरी की. तो अभी देखिए ये लीला सुनिए, अभी 2009 की यात्रा की, शायद 9 की 15 की यात्रा, 2009 की यात्रा में हम लोग गए थे. तो हम लोग ना 15 लोग जरा जल्दी गए थे, तो हम लोग एडवांस पार्टी ना, मैनेजमेंट है बहुत, देखना पड़ता है सब कुछ. और कुछ लोग ऐसे 2 दिन आके आराम करना था, तो हम लोग 4-5 लोग मैनेजमेंट के और बाकी के लोग थे 10-15, वो आने वाले, कुल मिलकर 15 लोग थे. तो वो दो लोग तो आराम करने के आ रहे थे, हम लोग अपना व्यवस्था करने के लिए थे। तो हमारा ऐसा एक प्रण था कि भाई जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे ना, हमारा स्वागत ही महाप्रसाद से होना चाहिए, कुछ नहीं खाना है हमको, खाली महाप्रसाद खाना है। ठीक है, तो ये आदमी आ गया हमारे पंडा की तरफ से, तो हमको लगा बाप रे कितना लेके आया प्रसाद, तो उसने उतारा तो देखा तो इतना ही था उसके अंदर। हमको लगा इतना बड़ा टोकरी में कितना लाया होगा, देखा तो इतना ही है। तो मैं बोला अरे तुम क्या कितना सा प्रसाद लेके आए, अरे 15 लोग है, 15 लोग, पता है क्या मैं तो पहले आया हूँ और मुझसे 3 गुना बड़ा मेरा भाई है साइज में, वो तो अकेला ही खा जाएगा पूरा। बोला प्रभु जी, वो आदमी क्या बोलता है, बड़ा प्रेम से बोलता है, बहुत एकदम अनुभवी आदमी था ये। बोले प्रेम से बोला प्रभु जी आप चिंता क्यों करते हो, और आएगा ना, आप तो खा तो लो पहले इसको, इसको खा तो लो, बाद में इसको पाएंगे, इसके बाद में फिर आएगा, और डोंट वरी, और दिल से खाओ, कोई कम चिंता मत करो, और प्रसाद आ जाएगा। तो सोचा अभी क्या है, अभी उसको बताएंगे, अभी चलो ठीक है कोई बात नहीं, वापस लाने का वादा किया तो ठीक है हम लोग खा लेंगे उसको। तो देखिए क्या क्या अंदर है इसके अंदर, उसके 2 प्रकार का राइस है, एक सादा राइस है, एक उसमें थोड़ा सा मूंग दाल मिक्स वाला एक राइस है, एक वो ब्राउन राइस मीठा वाला राइस है, उसके बाद एक दाल है, उसके बाद में एक सब्जी है, इसके बाद में इधर और एक सब्जी है, उधर भी और एक सब्जी है, ऐसा है, कितने 7 प्रकार के आइटम आ गए। और इसमें एक आइटम आ गया, ये तो अति 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 क्या कहे इसका, वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये आइटम कहते हैं किसी को मिलता नहीं है, ये खाली अंदर 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 से प्राप्त होता है। तो हमारा अंदर 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 संपर्क था, इसलिए हमको ये आइटम आ गया, और मैंने और सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु ने इसका भरपूर आनंद लिया। तो उसके बाद में फिर इस तरह से उसको परोसा गया, और फिर हम लोग ने उसका धीरे धीरे उसका अंदाज लिया, और धीरे धीरे हमने उसको इस तरह से परोसा, और जितना चाहे उतना खाया, कई बार लेके खाया, हाँ, और हम लोग का हो गया। फिर बचा हुआ लोग आ गए, हमारे बड़े भैया भी आ गए, और उन्होंने सबने मिलकर ऐसा दबा के खाया, पूरा खाया, फिर भी यह अवस्था हो गई प्लेट की हमारी, लेकिन बर्तन में वैसे ही प्रसाद बचा 15 लोगों के खाने के बाद भी। हाँ, तो हमको बड़ा आश्चर्य हो गया। तो कहते ऐसा ही है जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथपुरी का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। तो मैंने बोला ये बड़ा चमत्कार की बात है, कितना लोगों को और खिलाने का प्रयास किया वो खा नहीं पाए, फिर जोर जबरदस्ती वो मैनेजर के सर्वेंट लोगों को बांट दिया। ये फर्स्ट डे का अनुभव था। अभी दूसरा अनुभव देखिए, दूसरा अनुभव क्या हुआ, हमने तय किया था कि हमको ना महाप्रसाद लोगों को खिलाना ही है, बस एक बार दर्शन बढ़िया होना चाहिए और महाप्रसाद मिलना चाहिए, बस 2 चीज एकदम पक्का होना चाहिए, जो भी खर्चा होगा आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी हमारा 1 बजे जैसे आसपास राजभोग लगता है और वो 3:30 बजे तक बाहर निकलता है, 3:30 बजे तक लंच को करना तो मुश्किल है, उसके पहले लोगों को भूख लगेगी। तो उन्होंने हमको कुक भी दिया था जगन्नाथपुरी का, वो बोला कि हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच आपके लिए बना देंगे यहाँ पर, और वो जो दोपहर को 1 बजे लगाया भोग जो है, वो जो 3:30 बजे बाहर निकलेगा, उसको हम रात को आपको खिलाएंगे। तो बोला क्या प्रभु जी आप दोपहर का भोजन रात को खिलाएंगे, ठंडा ठंडा खाएंगे तो कैसे पचाएंगे उसको और कैसे होगा। तो बोला प्रभु जी क्या कर सकते हैं अभी, उसके कोई उपाय नहीं उसके लिए। तो हमने बोला अभी हम डॉक्टर हैं, हमको बहुत सारा नॉलेज है, तो हम बोलेंगे ठीक है ठंडा प्रसाद खाएंगे, उसके ऊपर एक फर्स्ट क्लास अचार खाएंगे साथ में, और एक गरम गरम सूप पियेंगे ऐसा मसालेदार चटपटा, तो क्या होगा वो जरा अंदर अच्छा गर्मी पैदा करेगा, तो खाना हजम भी हो जाएगा और आनंद भी आएगा। तो हमने हमारे धामवासी कुक को बताया, देखो आप सबके लिए सूप बनाओ बढ़िया चटपटा, और बाजार से रवि को बोला जाओगे अचार लेके आओ, उसने अचार लेके आया। और हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये खबर ना कैसे भी करके वो हमारे पांडा जी के पास पहुंची कि डॉक्टर साहब ने हमारे कुक को, कुक तो उसका ही था ना, तो वो अब कुक से बात करता है फोन पे, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है ना वगैरह। तो बोले नहीं शाम को सूप का ऑर्डर दिया। बोला क्या सूप का ऑर्डर दिया, क्यों? बोलते वो ठंडा खाना आएगा जगन्नाथ जी को, हजम कैसे होगा, इसलिए उन्होंने, अभी मैं बोला उनको क्या जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बनाओ, तो बना रहा हूँ अभी। तो उन्होंने मैसेज भेजा, एकदम नाराज हो गए वो, बोले क्या आप सूप बनाते हो अचार खाते हो, जगन्नाथ जी के प्रसाद के साथ में और कुछ नहीं होना चाहिए, जगन्नाथ का प्रसाद तो अपने आप में परिपूर्ण है, बोलते कंप्लीट इन इटसेल्फ, नथिंग कैन बी अकंपनीड, ऐसा बाहर से सपोर्टिंग कोई चटनी अचार मुखवास वगैरह होना नहीं चाहिए उसके अंदर। तो पहली बार सुना था मैंने ना, डर के तुरंत ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बोला कुछ भी कर सूप का, तू सूप दिखा मत हमको शाम को। तो अभी हमको चिंता थी फिर भी मन में, अरे तभी इनको नाराज नहीं करना है पंडा को भी, क्या करेंगे, लेकिन अभी खाना कैसे खाएंगे, ठंडा ठंडा सभी राइस ठंडा होगा, सब्जी ठंडी होगी, दाल ठंडी होगी, तो वो कैसे खाएंगे, ऐसा विचार मन में था। उतने में वो उसका गाड़ी आ गया। हाँ थोड़े बड़े थे ये, तो छोटे पात्र है ना, थोड़े बड़े बड़े पात्र लेके आए। तो मैंने कहा प्रभु जी 168 लोग हैं इसके अंदर, इतने में कैसे होगा। तो फिर वही बोलता है प्रभु जी आप खा लो, प्रभु जी आएगा और आएगा, डोंट वरी, खत्म होगा तो बुला बोल देना, मैं मंगा लूंगा। और ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है वो, क्योंकि वो चीप पंडा है ना उधर का, उसको तो पता है कहाँ से लाना है, क्या करना है, किधर से कब लाना है, सब पता है उसको। अभी हमारे मन में कैसा हमारा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि धाम में जाते समय ना शहर का दिमाग मत लेके जाना उधर, धाम का होके रहना उधर, शहर का रजोगुण तमोगुण लेके धाम में मत जाना, क्योंकि शहर का गणित धाम में नहीं चलता है। आप कितना भी दिमाग लगाओ, आप कितने बड़े मैनेजमेंट वाले एक्सपर्ट गुरु होंगे, मैनेजमेंट में कुशल होंगे, आपके पास बहुत सारा तजुर्बा होगा, इधर भी गए आप, उधर भी गए, उधर भी खाना खिलाया था, जयपुर में भी गए, सब जगह ठीक है, फिर भी ये शहर का दिमाग है ना वो धाम में काम नहीं आता है। फिर भी हमारा चल रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कमेटी में, अभी क्या करेंगे, अभी कैसे समझाएंगे इनको, मुंबई के लोग हैं परेशान हो जाएंगे, और आपको मालूम है ना यात्रा में प्रसाद अच्छा नहीं मिलेगा तो बाकी सब कुछ अच्छा होगा तो लोग गाली देते हैं, कथा अच्छा किया कौन भाव नहीं देता है, हाँ दर्शन अच्छा किया, गाड़ी अच्छी तरह से मंगाई, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, प्रसाद नहीं खिलाया ना ठीक से तो गाली देते रहेंगे, अरे कैसा प्रसाद बेकार था, वो लंच में सब्जी बेकार थी, वो स्वीट मिला ही नहीं, वो सब्जी कम पड़ी, ऐसा बहुत सारा एंड तक फीडबैक आते रहते हैं। अभी वो तो जगन्नाथपुरी में गए, उधर ही प्रसाद का फीडबैक आएगा तो कैसे चलेगा, ऐसा हमारा मन में चल रहा है। तो वो डब्बे आ गए उधर, वो मटके आ गए, वो लगा दिए बुफे में, लोगों को बोला अभी जाओ, तो लोग लाइन पे लग गए, चालू किया खाने का, तो ना पहले का एक चम्मच निकाला ना वो ठंडा था, उसके बाद में सारा गरम गरम अंदर, एवरीथिंग हॉट, यकीन नहीं हुआ, सबके प्लेट में से धुआं निकल रहा है, दाल भी अंदर गरम, चावल भी गरम, मिठाई भी गरम, खाली ऊपर का एक थोड़ा थर था वो ठंडा था बस, बाकी 170 लोगों ने ऐसा दबा दबा के लिया, दबा दबा के लिया, हम लोग भी ऐसे खाओ खाओ और भी आएगा, खाओ चिंता मत करो, और चाहिए क्या, और चाहिए क्या, ऐसा संकोच नहीं उधर ना आपने कैसा, हे प्रभु जी गुलाब जाम एक ही देने का, दो नहीं देने का, उधर ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है स्वीट, ये इतना ही देने का, दो ही पूरी देने का, ऐसा हमारा कभी कभी रहता है। यहाँ पर तो पूरा खुला दिया ना परमिशन, आप खा लो चाहे तो और आएगा, तो हम लोग एकदम खुले दिल से बोल रहे हैं खाओ खाओ, लोग है ना ऐसा शेर की तरह भूखे आए थे सब लोग ने दबा दबा के लिया, फिर भी उसमें से बचा, और फिर भी होटल के लोगों को देना पड़ा, और एक नहीं 7 दिन तक लीला चलती रही। हाँ वो रोज रोज शाम को 8 बजे डब्बा खोलने के बाद गरम गरम खाना, हाँ और पर्याप्त मतलब कैसा गले तक खाने के बाद आ कंठ खाने के बाद भी उधर बचा हुआ है, तो ये चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि जगन्नाथ जी का प्रसाद परिपूर्ण होता है, जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई सप्लीमेंट होने की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट होना अपराध है, और जगन्नाथ जी का प्रसाद का एक नियम है, हम बाकी सारे प्रसाद लेने के लिए आसन डाल के बैठते हैं, जमीन पर पट्टी डाल के बैठते हैं, जगन्नाथ जी का नियम है जमीन पर बैठ के खाना है, जमीन पर बैठ के खाना है, केले का पत्तल पर बैठ के खाना है, ऐसा उसका नियम है। तो ये जो चमत्कार है ना, ये आज भी मैं देखता हूँ कि देखो जगन्नाथ के किचन में 7200 किलो का चावल बनता है रोज, एक मुझे पता है, ऐसे हजारों किलो की दाल बनती है वगैरह, लेकिन 7200 किलो का चावल बनता है हर रोज, हाँ फिक्स है उसका, चाहे उत्सव हो या नहीं हो, स्लैक सीजन हो या सीजन हो, उतना ही बनता है, और उतने वाले प्रपोर्शन में चावल दावल दाल चावल सब्जियां सब बनती है, लेकिन बाकी समय पर ज्यादा नहीं होता है, उत्सव में कम नहीं पड़ता है, उतना ही खाना है, 10,000 लोग खाइए 1,00,000 लोग खाइए वैसा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ये चमत्कार है पूरा, कैसे होता है क्या पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, कभी भी प्रसाद कम पड़ा, ये मुझे और चाहिए था क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है कभी, वो जगन्नाथ जी का चमत्कार लीला है, वो कुछ भी करो आप कभी प्रसाद कम नहीं पड़ेगा, बड़ी श्रद्धा की बात है ये। तो कई बातें हमने जगन्नाथपुरी में सीखी, और जगन्नाथ का प्रसाद है ना वो पूर्ण ब्रह्म है, उसको आस्वादन करने के बाद दो चीज जगन्नाथपुरी में है, एक जगन्नाथ का दर्शन और एक जगन्नाथ का महाप्रसाद सेवन, ये दो चीज एक बार जो प्रेम से करता है ना, हाँ भाव से, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये चावल क्यों दिया रे, ये दाल क्यों दिया, ये देना वो देना, ऐसा नहीं। महाप्रसाद के रूप में ये शाक का कृष्ण आस्वादी लो, ये भाव से जो खाएगा ना बिना भेदभाव के कि मीठा दो, नमकीन दो, ये मत दो, ये अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाव से जो प्रसाद ग्रहण करता है श्रद्धा से, और उतने ही भाव से जगन्नाथ का दर्शन करता है, ये दो चीज करने से जगन्नाथ जी का धाम का दर्शन पूर्ण होता है, और जो करने वाला व्यक्ति है वो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेता नहीं है। ये दो ही चीज करने से इस जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त होता है, ऐसा ये भाग्य है इसका। तो जगन्नाथ जी प्रसाद के कैसे भूखे, देखिए अभी आप, मैं आपको कर्मा बाई की कहानी बताता हूँ। हाँ, वो कर्मा बाई, दो कर्मा बाई है, एक राजस्थान में भी थी जो जिनका श्रीनाथ जी के साथ भी लीला हुआ है, वो दूसरी कर्मा बाई है, लेकिन कहानी सिमिलर है, दोनों का नाम भी कर्मा बाई है और स्टोरी भी सेम है। वो श्रीनाथ जी को भी खिचड़ी खिलाई थी उसने, और वो भी इधर भी खिचड़ी खिलाई। तो वो कैसा है कि वो खिचड़ी बनाकर लेके आए थे गरम गरम, एक बार उसको दिल कहा कि जगन्नाथ जी को खिलाना चाहिए, लेकिन वो पुजारी वर्ग या जाति में से किधर भी से नहीं थी। वो जब लेके आए तो उसको ना भगाया गया, बोलते नहीं नहीं आपका प्रसाद नहीं लेंगे, हमारा किचन में से आएगा वो। तो ठीक है, वो नाराज हो गई बेचारी, क्या करें, छोटी सी औरत थी, वो कुछ नहीं कर पाई। वो खिचड़ी लेकर घर पे चले गए रोते रोते, और अपने झोपड़ी में जगन्नाथपुरी के सीमा के पास घर था उसको, तो वहां पर गई वो और रोने लगी बैठ कर कि हमारा तो जगन्नाथ जी ने स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जगन्नाथ जी तो सब जानते हैं ना, सब अंतरिया में जगन्नाथ जी तो जानते हैं, बुढ़िया को वापस कर दिया गया। तो जगन्नाथ जी को वहां से भोग आया और भोग लगाया गया, पर्दा बंद किया गया, तो पर्दा बंद करते ही हमारे जगन्नाथ जी वहां से भाग गए, सीधे भागे, बालक का रूप बनाया और वो माता के झोपड़ी में पहुंच गए। और बोलते मैया भूख लग रही है, कुछ खाना खिलाओ। तो बहुत सुंदर बालक था वो, मैया रो रही थी, बहुत खुशी हुई उसको देखकर। तो झट से उसको वो बारदाना है ना, क्या बोलते हैं उसको, गोनपाट, वो क्या बोलते हैं, गनी सैक, टाट 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 के आसन पे बिठाया और गर्मा गर्म खिचड़ी खिलाई। तो ये बालक इतना भूखा था, उधर भी भोजन का समय था ना, इधर भी भूखा ही था, दोनों हाथ से खाने लगा, दोनों हाथ से हाँ खा रहा है इतना पे, क्योंकि टेंशन भी है ना, वहाँ घंटी बजेगी तो वहाँ खड़े होना जाके, उतने में खाते खाते घंटी बज गई। तो वैसे ही भागा बालक और जाके खड़ा हो गया ऐसे जगन्नाथ जी के रूप में। तो जब पर्दा खोला गया घंटी मार के, तो क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी के मुंह में भी खिचड़ी, दोनों हाथ में भी खिचड़ी, और नीचे किधर भी खिचड़ी नहीं है, किधर भी खिचड़ी नहीं है। तो बोले कहाँ से आए खिचड़ी, तो कहीं से खा के आए जगन्नाथ जी, उनको पता है। तो पूरा भी फरमान निकला, जाओ ढूंढ के निकालो कहाँ से खाया खिचड़ी। तो ढूंढते 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 सब लोग इस बुढ़िया की कुटिया में आए और पूछे, तुमने उधर भोजन लगाने को आए थे ना तुम, तो तुम्हारे घर में कोई खाने को आया था क्या। तो बोलते हाँ ना, एक लड़का आया था, बहुत सुंदर सुंदर लड़का आया था, नीला नीला, बहुत भूखा था बेचारा, मैंने खिचड़ी खिलाई उसको, बड़े प्रेम से खाया, पता नहीं बीच में उठ के भाग क्यों गया वो समझ में नहीं आया मुझे, भाग गए बीच में उठ के। तब उनको समझा, अरे इनको हमने रिजेक्ट किया था, मना कर दिया था उनको, भगा दिया था। और जगन्नाथ जी क्या थोड़ी बंद चुप रहेंगे, वो तो गए वहां पर, तुमने नहीं खिलाया तो मैं जाके खाऊंगा उधर, है ना। घर में कैसा होता है, मैया बटाटा वाटा बनाओ, नहीं बनाऊंगी, ठीक है बच्चा बोले होटल में जाके खाऊंगा खा के आएगा। वैसे ये जाके खा के आए तो समझ गया कि भगवान को खिचड़ी इनकी बड़ी पसंद है। तो बड़े प्रेम से कर्मा बाई को बुलाया गया, बोले रोज खिचड़ी खिलाया करो भगवान को। तो अपने जीवन के अंत तक जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाया उसने, जैसे वो लड़की ने जीवन के अंत तक गीत गोविंद सुनाया बुढ़ी होने तक, फिर उसके वंशों को भी वो सेवा में, वैसे ही कर्मा बाई को भी उसके परिवार को वो सेवा मिल रही है, और वहीं से वो आज की खिचड़ी आती है वहाँ पर। वो खिचड़ी अन्न क्षेत्र में बटती है, कम से कम 10,000 लोग वहाँ पर अन्न क्षेत्र में खिचड़ी खाते हैं जगन्नाथ जी की, और क्या कहें, अभी किसी को कम नहीं पड़ता कभी भी। वो अन्न क्षेत्र में रघुनाथ दास जी पहले भिक्षा मांगते थे, राजकुमार थे वो, राजा के पुत्र थे, हाँ कितना धन था उनके पास, सब कुछ छोड़ के भिक्षुक बनने के लिए आए, तो अन्न क्षेत्र में खड़े होने लगे, फिर वो बंद कर दिया, फिर जो बचा कुचा फेंकते थे ना उसको खाते थे, उसके बाद वो भी बंद कर दिया। उसके बाद में वो गाय जिसको खाकर छोड़ देती है, मतलब गाय भी नहीं खा सकती है, वहाँ पर खाने को बैठे, फिर महाप्रभु चैतन्य आए और उनके हाथ से छीन छीन कर वो सड़ा हुआ अन्न खाया, बोले सबसे बड़ा अमृत आप खा रहे हो। हाँ, अब जगन्नाथ जी का प्रसाद जो कुत्ता भी नहीं खा रहा है, गाय भी नहीं खा रही है, इतना खराब हो चुका है वो। वो खाने पर भी रघुनाथ दास जी को परमानंद हो रहा है और वो खाकर चैतन्य महाप्रभु को परमानंद हो रहा है। तो क्या बता रहे भगवान, अरे जगन्नाथ का प्रसाद है ये, महापूर्ण प्रसाद है ये। इसके अंदर जो सिद्धि प्राप्त है वो हजारों साल जप करने से भी नहीं हो सकती है, ये केवल खाने से प्राप्त हो सकती है। ऐसी महिमा है जगन्नाथ प्रसाद की। और तो कर्मा बाई की कथा हो गई। अभी वो एक साला बेग नाम के बहुत बड़े भक्त थे। कैसी कथा थी उनकी, वो एक मुस्लिम राजा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वो मुस्लिम राजा था तो वो ना जबरदस्ती हमेशा यहाँ आक्रमण कर वहाँ आक्रमण कर करके अपना राज्य बनाता था और हर जगह से धन भी लाता था और हिंदू की औरतों को पकड़ के लाता था और अपनी पत्नी बनाता था। तो वैसे ही उसने एक हिंदू की औरत को उठा के लाया, बड़ी धार्मिक थी औरत, लेकिन वो अभी क्या करे, मुसलमान राजा आक्रमण करके भगा के लेके गया और जबरदस्ती शादी किया उसके साथ। लेकिन शादी करना और फिर जाना युद्ध में सीमाओं को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या हुआ, ये पत्नी जो बनी, बेगम बनी उसकी अभी, वो तो बेगम प्रेग्नेंट हो गई और बेगम ने बालक को जन्म दिया। तभी भी ये युद्ध में ही था तो उसने फिर मौका लिया और अपने बालक को पूरा वैष्णव संस्कार दिया, पूरा सब शास्त्र सिखाया। और वहाँ पर एक साधु आए थे, वो बहुत देर रहे उनके महल के पास और उनके पास में शिक्षा दिया बालक को। उतने में वो लौट के आया बीच में, तो साधु को तंबू को सब तो उखाड़ के फेंक दिया गया, उसको साधु को भगा दिया गया। लेकिन जो बालक को जो शिक्षा प्राप्त हुई थी ना बचपन में पिताजी के एब्सेंस में हिंदू धर्म के, तो बड़ा भक्त बन गया वो। और यथावकाश जब ही पिताजी का मृत्यु हो गया ना, तभी ये बालक जो है ना वो माँ को लेके वृंदावन चला गया और वृंदावन में बहुत भजन किया उस बालक ने। उसका नाम था साला बेग था और बहुत भजन किया उसने। तो एक बार वृंदावन में बीमार पड़ गया वो, तो क्या करके उसको बीमार, अभी बहुत लंबी कहानी मैं छोटी सी करके बता रहा हूँ। बीमार पड़ गया बहुत सारा, तो उसको लोकल साधु ने कहा कि तुम ना रथ यात्रा में चले जाओ और मरने के पहले जगन्नाथ का एक बार दर्शन कर लो। तो उसको बहुत सारा महिमा सुनाया गया जगन्नाथ जी का, तो वो ऐसा निकला और ना इतना बीमार था वो बेचारा, तो वो चल नहीं पा रहा है, बीच में भोजन नहीं मिल रहा है उसको, पैदल चल रहा है, इतना कष्ट उठाया उसने। लेकिन वो ना, उसको पता था कि अमुक अमुक तिथि को रथ यात्रा होगी और हमको पहुँचना है, तो वो पहुँच नहीं पाया। तो रथ यात्रा निकल गई, मतलब जो नीलाचल से सुंदराचल वाली खत्म हो गई, तभी भी ये नहीं पहुँचा है। उसके बाद में हीरा पंचमी हो गई, तभी भी नहीं पहुँचा, क्योंकि उसको चलने को नहीं हो रहा था। तो वो अभी क्या करेंगे, वो बौड़ा यात्रा शुरू हो गई वहाँ से, मतलब उसको सब तिथि मालूम थी, ये तिथि के बाद में ये होना है, तो वो तिथियाँ वो गिन रहा था, उसको पता था। तो वो सब तिथियाँ समाप्त हो गई और वापसी तिथि आ गई वापस जाने की, बौड़ा रथ यात्रा, उल्टी रथ यात्रा, तभी भी ये नहीं पहुँचा। रथ यात्रा बीच रास्ते में आई, तभी भी नहीं पहुँचा। लेकिन अभी वो बहुत एकदम डेस्परेट हो गया, तो जहाँ पर था ना वो, उधर ही पड़े पड़े उसने प्रार्थना शुरू की, हे जगन्नाथ भगवान मत जाना आगे, मैं आ रहा हूँ, कृपा करके मत जाना। तो बीच रास्ते पे ना रथ आके रुक गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार बताया, कि जगन्नाथ का जो रथ है ना वो खींचते लोग हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि वो नहीं खींच रहे वो अपने मर्जी से चल रहे हैं, अपने दिशा में अपने मर्जी से जगन्नाथ जी यात्रा करते रहते हैं। तो ये लोग सब खींच रहे हैं, तो रथ रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। लोग क्या बात हुई, जगन्नाथ का अपराध हुआ, नाराज हुए, सब ढूंढने लगे कारण क्या है उसका, तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। उतने में वो ना बेचारा कैसे भी करके पहुंच गया, और पहुंच गया उसने रथ के सामने बैठकर ऐसा गीत गाया भगवान के सामने, ऐसे प्रार्थना किया रो रो कर। तो वो जब पूर्ति हो गया तो सब लोग दंग रह गए, अरे बाप रे क्या, इसके लिए रुके थे भगवान, ये पुकार रहे थे रुके थे। तो उसको बड़े सम्मान से उसको ना उधर ही बसाया उन्होंने, सभी भक्तों ने ऐसा उधर जहाँ रुके थे रथ, जहाँ प्रार्थना सुनाई, उसी पर वहीं पर महल बनाया, महल नहीं आश्रम बनाया उसके लिए, और वहीं पर रखा उसने उनको। तो साला बेग को वहाँ रखा, तो साला बेग ने वहाँ रहकर ना बहुत सुंदर कविताएं लिखी, भजन लिखा। उनके भजन संग्रह हमारे कैसे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, हाँ हमारे मराठी के पद्य कविता के इसमें वो आते हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए आते हैं, इसमें परीक्षा भी होती है। तो वैसे उड़िया में पाठशाला में साला बेग की कविताएं और भजन आते हैं, इतने फेमस है वो। तो सालाबाग ने उसके बाद में एंड तक वहां पर निवास किया, और वो रिवाज हो गया उसके बाद में कि पहली बार भगवान इच्छा से रुक गए थे, अभी भी वहां पर हॉल्ट है। आज भी जब जीवित थे तभी भी हॉल्ट था, सालाबाग आते थे बाहर, अपने सुंदर सुंदर गीत सुनाते थे प्रेम वाले, और फिर उसके आगे भगवान चलते थे। फिर सालाबाग का देहांत हो गया तो सालाबाग की समाधि बनाई गई उधर उसी जगह पर जहां पर वो रहते थे। तो आज भी सालाबाग का मंदिर और सालाबाग की समाधि एक ही जगह पर है। आज भी रथ वहां रुकता है और उनके तरफ से उनके भजन कोई गाता है, जगन्नाथ को सुनाता है, फिर जगन्नाथ जी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सालाबाग के जीवन पर हमने एक नाटिका प्रस्तुत की थी 1.5 घंटे की, बहुत सुंदर नाटिका थी सालाबाग के भक्ति और भाव के ऊपर। ऐसे कई प्रकार के भक्त हैं उसमें, और एक भक्त है दीन बंधु मोहंती। तो ये बंधु मोहंती कैसे थे? बंधु मोहंती ना एकदम छोटे व्यापारी थे, वो कुछ ना कुछ खरीदते थे और उसको बेचते थे, और जगन्नाथ जी का मंदिर था घर पे, और बड़े भक्त थे जगन्नाथ जी के। रोज सवेरे ना जगन्नाथ जी खड़े सामने खड़े होना है, और सामने खड़े होकर बताना है कि आज का बैलेंस कितना है, कितने पैसे लेकर मार्केट में जा रहा हूँ, और फिर मार्केट में जाकर क्या खरीदूंगा और क्या बेचने वाला हूँ। तो दिन भर वो जाके मार्केट से खरीदने का, और उसको दिन भर बेच के शाम को घर पे जो आएगा हिसाब किताब वो फिर जगन्नाथ को बताने का कि इतना हमने ले गए थे, इतना खरीद किया, इतने में बेचा, इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ऐसे जीवन भर प्रामाणिकता से किया उसने, जगन्नाथ जी को रोज हिसाब किताब देना। बड़ा जगन्नाथ जी का प्रेमी भक्त था वो। लेकिन दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य कहिए, आगे देखेंगे सौभाग्य था कि दुर्भाग्य था, उसका विवेचन आगे करेंगे। लेकिन अभी सोच लो दुर्भाग्य था उनका, धीरे 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 करके उनका बिजनेस जो था ना वो एकदम फ्लॉप हो गया। जितना लेके जाते थे उससे कम लेके आते थे, मतलब घाटा करके आते थे। ऐसे करते करते कि नहीं, एक दिन ना जो लेके गए वो सब खोके वापस आ गए, मतलब शून्य। उसका भी हिसाब दिया जगन्नाथ को, रोज हिसाब दिया घटते हुए बिजनेस का। क्या कहेंगे बिजनेस को, बिजनेस नहीं कह सकते हैं, जो भी कहना है कह लो। तो एक दिन तो शून्य हो गए पूरे, घर में 3-4 बच्चे थे उनके, पत्नी थी बहुत धर्मशील पत्नी थी, उस दिन तो कुछ भी नहीं लाया, कल भी कुछ नहीं लाया, कुछ था ही नहीं, अभी क्या करें, परेशान हो गए, भूखे लग रहने लगे। तो पत्नी बोली अभी तुमने जगन्नाथ जी के लिए जीवन भर तुमने हिसाब किताब दिया, अभी चलते हैं उनके पास, अभी उन्हीं से मांगते हैं कुछ, अभी क्या करना है आगे भविष्य में उनको ही पूछते हैं। तो चले फिर भूखे बालकों को लेकर, भूखे पत्नी भूखे पति चल के निकले। उधर तो गरीब आदमी के पास क्या वाहन होगा, क्या रथ होगा कि बैलगाड़ी होगी घोड़ा गाड़ी हो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो पैदल पैदल वो भी भूखे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं जगन्नाथपुरी के ना, पहुँचते पहुँचते कमज़ोर बालक कमज़ोर माता पिता रात को देर से पहुँचे। अभी रात को देर से भिक्षा भी कोई देने के लिए जगह नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, बेटे रो रहे पेपा पापा खाना खिलाओ, बोले खाना है नहीं कुछ नहीं, जगन्नाथ जी का मंदिर बंद है, अभी कहाँ जाएं, जिनको मिलने आए हैं जिनको फरियाद करने के लिए आए हैं उनका मंदिर भी बंद हो गया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब भी बहुत भूख लगती है ना तो नींद आ जाती है कमजोरी की वजह से। आपने कभी अनुभव किया ऐसा, भूख खाना नहीं मिला ना बहुत देर तक, पहले तो शेर बनते हैं हम लोग कुछ देर तक, बाद में शेर की बिल्ली बन जाती है और बिल्ली बन के सो जाती है फिर बाद में, ऐसा अनुभव होता है। तो बेचारे सो गए, भूखे बच्चे बेचारे, और बंधु मोहंती भी सो गया, पत्नी भी सो गई। उतने में आवाज सुनाई, बंधु मोहंती कौन है, बंधु मोहंती कौन है, बंधु मोहंती कौन है, ऐसा करके अचानक जाग आएगी बंधु मोहंती को। बोला कौन पुकार रहा है रात को, बड़ी मीठी मीठी आवाज में कोई बालक पुकार रहे। तो जग गया, देखा तो एक बालक बहुत सुंदर फेटा बांधा हुआ, नीले रंग का बालक बहुत सुंदर, के अंधेरा था ज्यादा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा बालक था, बहुत सुंदर बालक था। उसके सर पे ना वो कैसा आदमी आया था ना, वो मेरा हमारा इधर देखो, मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, तो कैसे आदमी आया था टोकरी लेकर, ऐसा उसके सर पे भी टोकरी थी, तो वो टोकरी में सोने की थाली थी। हाँ, वो बोल रहा है बंधु मोहंती आप ही हो क्या? हाँ बंधु आप ही हो, आप बाहर से आए हो ना? हाँ हाँ, आपके लिए वो मंदिर से प्रसाद भेजा है। अच्छा, तो भी अंधेरे में समझ में नहीं आया कि सोने की थाली है कि चांदी की थाली है कि मिट्टी की थाली है। अभी खाना इंपॉर्टेंट है, थाली इंपॉर्टेंट नहीं ना, भूख लगने के बाद में थाली कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसने सोने की थाली बड़ी परात उतारी और बोली देखो ये महाप्रसाद आपके लिए, आपके नाम से मंदिर से पुकार के मुझे भेजा गया था, मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया, अच्छा हुआ आप मिल गए, बहुत देर हो गई है मुझे नींद आ रही है, आप है ना ये खा लो पूरा, मैं सुबह आकर थाली देके जाऊंगा आपसे। नेचुरल लॉजिकल ना, मतलब रात को अभी बच्चे को नींद आ रही है, बच्चा बेचारा ढूंढ रहा है अपना काम करना है उसको, तो ये भी अरे बच्चों बच्चों उठो 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 उठो, अरे देखो माँ प्रसाद आया है, खाना खाया, उठो उठो, सब लोग फटाफट उठ गए और थाली के चारों तरफ बैठ के ना ऐसा पूरा रिंगन रिंगन बनाया, पूरा सर्कल बनाया और बड़े प्रेम से पूरा प्रसाद खाया। हाँ पूरा प्रसाद खाया और सो गए। अभी क्या करना, अभी लोग बच्चे को पुकार रहे, नाम भी नहीं पूछा बच्चे का, क्या नाम से पुकारेंगे, वो तो पुकारते पुकारते आया था बंधु मोहंती करके, तुमने नाम तो नहीं पूछा उसको। तो भी देखो थाली उसकी है तो आएगा लेने के लिए, अभी हम लोग सो जाते हैं। थाली को उल्टा किया और तकिया बना दिया और उसके चारों ओर गोल सब लोग सो गए तकिया बना के। ठीक है, अभी क्या हो गया, भगवान जगन्नाथ है ना वो रात को देर सोते हैं और सुबह वो जल्दी उठते हैं। क्यों, केवल 2 ही घंटा सोते हैं वो भी उत्सव में सोते ही नहीं है। हमने देखा है रात भर दर्शन दे रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है, बहुत वहां पर शोर मच रहा है, मंदिर में बहुत भीड़ होती है रात को भी, बीच रात में। तब ऐसे देर रात में सोए थे, जल्दी 3:30 को उठ जाते हैं, मंगला 3:30 को हो जाती है, पहला भोग भी लग जाता है उसको। तो फिर वो जब सुबह उठे भगवान जल्दी, तो पता चला सोने की थाली गायब है। अभी सोने की थाली गायब है तो बड़ी बात है ना, और सोने की थाली मतलब क्या, एक तोला के साथ नहीं, बड़ी थाल थी वो, पूरा परात थी बड़ी, एकदम सिग्निफिकेंट आइटम था वो, तो गायब है। तो तुरंत राजा को खबर दी गई, गजपति राज को, कि मंदिर से, क्योंकि राजा जो है ना वो मंदिर का कस्टोडियन है बाय डिफॉल्ट, आज से नहीं पुरखों से, तो सारा रिपोर्ट पहुंचता है। तो खबर पहुंच गई कि थाली गायब है, तो राजा ने पुलिस भगाए, बोलते तो रात को गायब हो गए ना, अभी दिन भी नहीं हुआ है, जाओ चारों नाकाबंदी करो और जो बाहर निकल रहा है उसको पकड़ो और थाली ढूंढ के निकालो, अभी थाली शहर में ही है, बाहर नहीं जा रही, गई जा चुकी है। तो अंधेरे अंधेरे सब पुलिस दौड़ाए गए, सब जगह नाकेबंदी किया गया, किधर भी नहीं मिला। तो अंदर ढूंढे 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 आए, तब तक दिन हो गया था, और दिन हो गया ना तो बराबर गांव के लोग, बाहर के लोग सोए हुए मिले, उनके सर के नीचे सोने की थाली। तो पुलिस ने आके उठाया, हे उठाओ, कौन हो तुम? बोला मैं बंधु मोहंती हूँ, मैंने थाली चोरी की है। बोले नहीं, रात को एक बालक आया था मेरा नाम पुकारते पुकारते, बोले जगन्नाथ मंदिर से महाप्रसाद भेजा है करके। वाह वाह वाह, अच्छी कहानी बनाते हो, हाँ अच्छी चोर की भाषा अच्छी बोलते हो तुम। तो भी उसका बहुत समझा रहा था, वो ऐसे हुआ था, बाहर से आए हम, रात को भूखे थे, बहुत सो गए थे, हमको बुला बुला के जगाया गया, हमको थाली दिया गया, हमने फिर प्रसाद खाया, बहुत भूखे बच्चे थे, खा के तो भी फिर वापस नींद आ गई, तो हमने बच्चे को आवाज़ दिया, बच्चा लौट के नहीं आया, अभी हम वेट कर रहे थे कि बच्चा आएगा, उसके पहले आप आ गए, तो वो कहाँ मान रहे हैं। देखो पुलिस को ये सब स्टोरियाँ पसंद नहीं आती, उनको सब पता है स्टोरी सब कैसी होती है। सीधा उठाया बालकों को, इनको उठा के जेल में डाल दिया। जेल में कैसा होता है, बाहर रहोगे ना तो भूखे रहोगे, जेल में रहोगे 3 बार खाना तो मिलेगा कम से कम। तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। अभी तभी सुबह हो गई थी ना, तो सुबह उठते नाश्ता आ गया जेल का, फिर लंच आ गया, फिर डिनर आ गया, हाँ एक दिन चला गया उसके अंदर। खबर मिल गई राजा को कि चोर पकड़े गए हैं, थाली के साथ पकड़े गए, थाली मंदिर में चली गई है, चोर को जेल में रखा है। राजा खुश, बोला अच्छा हो गया, एक दिन में मिल गया, अच्छा हो गया। रात को राजा सोया, रात को राजा गजपति जब सो गए तो भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आए, ऐसा गुस्से में थे, लाल लाल आंखें थी उनकी और चिल्ला रहे उनके ऊपर, क्या समझते हो अपने आप को, मेरे भक्त को, सब भक्तों को बंद करके रखा है तुमने, अरे मेरे प्रिय भक्त हैं वो, मैंने उनके लिए थाली भेजी थी, मैं खुद गया था उसको लेकर, जब मैं खुद लेकर गया था और लौट के मैं नहीं गया वापस थाली वापस करने के लिए, तो उनका क्या दोष है इसके अंदर। तो राजा खबड़ा गया स्वप्न में, एकदम कांपने लगा, भगवान इतने गुस्से में आए। हाँ और कैसा है ना, बलदेव जी को साथ में लाते हैं तो बहुत डर लगता है, बलदेव जी कभी भी किसको भी पीटते हैं, तो वो डरने लगे, बोले क्या करना है बताइए। ठाकुर जी ने कहा अभी कभी उसको ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कभी जाओ उनको, अभी कभी रिहा करो और उनके लिए रहने को महल दो, मेरे बड़े प्रिय भक्त हैं, उनको पूरे आजीवन रहने की व्यवस्था करो और उनके गोदाम के अंदर ऐसा धान्य भरो और महाप्रसाद की मेरी व्यवस्था करो, रोज उनके यहाँ पर 3 बार 5 बार मेरा महाप्रसाद पहुंचना चाहिए और जीवन के अंत तक होना चाहिए, बस कभी कमी नहीं आनी चाहिए उनकी। राजा रात को ही भागा, सुबह तक वेट नहीं किया, भगवान ने कहा था अब भी जाओ, और राजा जाके जेल में प्रवेश किया, सब जेलदार जेल वाले लोग परेशान हो गए, राजा रात को क्यों आया जेल में, व्हाट इज हैपनिंग। तो कहते वो बंधु मोहंती किधर है, तो बंधु मोहंती के पास लेके गए, वो बंधु मोहंती वहां पर बैठे थे आराम से भजन कर रहे थे भगवान का, तो चरणों में गिर गए बंधु मोहंती के, तो आश्चर्य हो गया, अरे सिपाही तो डांट कर ले गए थे, राजा आके चरणों में प्रणाम कर रहा है, क्या बात है। तो कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी का आदेश है, आपको यहाँ से महल में रखना है। अच्छा, तो इनको लेके महल में रखा, एक अच्छा महल पैदा किया उनके लिए, और तुरंत शिफ्ट कर दिया उनको, मंदिर में ऑर्डर गया परमानेंट कि रोज भगवान की थाली जो अनंत बार वहां पर पहुंचनी चाहिए, जब जब चाहे जब जब पहुंचनी चाहिए। तो फिर उसके बाद में जब जब पहली बार थाली आई भगवान की, हाँ उस महल में, तो ये एक ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं अरे आ गए बच्चों आ जाओ खा लो खा लो जल्दी जल्दी खा लो, ऐसा नहीं, थाली आते ही पहले बाहर ले जाएंगे रास्ता में और पूछेंगे कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आया है, किसी को चाहिए, जो आएगा उसको खिलाएंगे, बचा हुआ घर ले जाएंगे, बच्चे और माता पिता खाएंगे। जीवन भर हाँ थाली लेकर उन्होंने सबको बांटते बांटते महाप्रसाद खाया। अभी बताइए इनका बिजनेस फ्लॉप हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अगर बिजनेस अच्छा चलता रहा या बढ़ते हुए चलता रहता तो वही रहते, वही रोज हिसाब किताब भगवान को देते, वही धंधा करते, वही उधर रहते, उधर ही मर जाते एक दिन। लेकिन भगवान ने, मतलब वो इतना प्रामाणिक भक्त था भगवान का, इतना रियल भक्त था कि भगवान रिझ गए उसके ऊपर, हाँ प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, बोला इसको मेरे पास आना चाहिए, मैं उसको मेरे अपने पास आना चाहता हूँ। अभी अपने पास आना है तो क्या करना चाहिए, वहाँ का जो है ना एस्टेब्लिशमेंट वो ख़त्म करना चाहिए। हम लोग अभी मीरा रोड में बैठे हैं, आप लोग दिल्ली में बैठे हो, कहीं बैठे हो, क्यों बैठे हो, सब सेटल्ड है वहाँ पर, आमदनी भी सेटल्ड है, घर भी सेटल्ड है, ये भी सेटल्ड है, वो भी सेटल्ड है। समझो आपका नौकरी चला गया, आपका धंधा डूब गया, तो आप कह लेंगे चलो गाँव चलते हैं, अभी इधर क्या है, अभी कुछ है नहीं, सब बेच के गाँव जाएंगे, वहाँ पर जो ज़मीन गाँव की है वहाँ खेती करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन जब तक यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है तो आप लोग क्यों जाएंगे, गांव के लोग बुलाएंगे, अरे भी आ जाओ गांव में, कितना दिन हो गया, बचपन से गए हो, अब तो लौट के आ जाओ, नहीं 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 अभी नहीं, बाद में आएंगे, अभी भी ऐसा बहाना बना के। लेकिन जब यहाँ से उखड़ जाएंगे ना तो फिर गांव जाने का सोचेंगे। तो भगवान को अपने गाँव में उनको बुलाना था, तो जहाँ पर भी था वहाँ से उखड़ने का प्लानिंग भगवान ने किया। पहला बिजनेस फ्लॉप कर दिया, धीरे धीरे करके पूरा जीरो कर दिया, ऐसा मजबूर कर दिया कि अभी क्या करें, कोई जाना है उनके पास जाते हैं। उनके पास गए, जाते ही पहले महाप्रसाद सोने की थाली में खिलाया, उसके बाद जेल में बंद करके जेल में तीन दिन तीन बार खाना खिलाया, उसके बाद महल में शिफ्ट करवाया और जिंदगी भर का खाने का व्यवस्था किया, खाओ पियो मौज करो मेरे चरणों में रहो। हाँ तो हमको क्या सीखना है बंधु मोहंती की कथा से, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। डोंट एवर थिंक कि ऐसा क्यों हुआ और मेरे लिए क्यों होना था, इतने लोग पापी लोग दुनिया में रहते हैं, उनको भगवान ने ये पाप ये कष्ट क्यों नहीं दिया, हम तो जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों होना था। और उल्टा लोग भी कहते हैं अरे प्रभु जी ये ऐसे आपके लिए क्यों होना चाहिए था, आपको तो नहीं होना चाहिए था, कम से कम इतना आपने भजन किया है तो आपके लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आपको क्यों होना था, भगवान ने आपके लिए ऐसा क्यों किया। अरे ये तो विशेष कृपा होती है जिनके ऊपर होता है ऐसे। अब सब लोगों का बिजनेस फ्लॉप नहीं किया उन्होंने, लेकिन बंधु मोहंती का फ्लॉप कर दिया, क्योंकि बंधु मोहंती अच्छा भक्त था। बंधु मोहंती को उसका बिजनेस फ्लॉप करवा के, उसकी छोटी मोटी आसक्ति को नष्ट करवा के अपने चरणों में आकर लीन करवाना था, इसलिए पूरा प्लानिंग बनाया था उन्होंने। इसलिए भगवान की प्लानिंग पर डाउट मत करो कभी, आप कभी भी शंका मत करो कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हर बार आपको भगवान जो कर रहे हैं उसका अर्थ समझ में आएगा ऐसा भी नहीं है। हाँ समझ में नहीं आएगा आपको उस समय कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो अगर अकबर बीरबल की कहानी है ना, वो अकबर सब्जी का फल काट के खा रहे थे, बात करते करते उंगली कट गई उसकी, तो बीरबल ने कहा अच्छा हो जो जो खुदा करते अच्छा ही करते हैं। तो अकबर को आया गुस्सा, अरे तुम क्या समझते हो मेरे उंगली कट गई, तुमको कह रहे हो अच्छा हो गया, जाओ इसको बंद करो जेल में। तो बीरबल को जेल में डाल दिया उसने, और फिर वो उंगली कट गई तो कटी गई, वो वापस जुड़ी नहीं, तो वो डेफिशिएंसी हो गई शरीर में, भी क्या करें, अभी कट गई भी क्या करें। तो कुछ देर बाद शिकार खेलने का टाइम आया, तो वो शिकार खेलने गया, तो कोई साथीदार को लेके नहीं गया, अकेला चला गया, तो जंगल में कहीं फंस गया अकबर, और तभी कुछ जंगल के लोगों ने उनको पकड़ा, आदिवासी भिल्ल लोगों ने, उधर देवी की मूर्ति थी, वो बलि चढ़ाने के लिए सोच रहे थे, बलि किसको चढ़ाए, उनको बलि चाहिए था। तो वो कोई आ गया तो उसको पकड़ के ले गए उनके गुरु जी के पास। तो गुरु जी बोला अच्छा बलि लेके आए तुम आज, इसको नहलाओ अच्छी तरह से और वो परीक्षक के पास भेज दो, वो इसकी परीक्षा करेगा पूरा, उसका अंग पूरा है कि नहीं। उसको नहलाया बिला अच्छी तरह से, खिलाया पिलाया और जाके वो गुरु जी के पास खड़ा हो गए। तो गुरु जी सब कुछ एग्जामिन किया, उसको परीक्षा किया, देखा कि अरे उंगली तो कटी हुई, शरीर भंग हो गया इसका, ये भंग हुआ शरीर है ना वो बलि के लिए योग्य नहीं है, इसको छोड़ दो। तभी राजा का चमका, दिमाग में लाइट आया उसके, अरे हाँ बीरबल ने कहा था कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, आज समझ में आया इतना दिन के बाद कि उंगली कटी थी इसलिए जान बची। तो वहां से फिर लौट के दरबार में आए, सबसे पहले बीरबल को जेल से फ्री किया और बीरबल भी खुश हो गया। बाद में फुर्सत में बीरबल को बुलाया और पूछा बीरबल मैं माफी चाहता हूँ तुमको मैंने जेल में डाला। तो बोला नहीं जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो फिर कैसे अच्छा करते हैं, तो आपका क्या हुआ आपने मुझे रिहा क्यों किया। तो बोलते हैं कि मैं शिकार में गया था तो ऐसे ऐसे हुआ मुझे पकड़ा गया, फिर मैं बाल बाल बच गया, मुझे बलि देने वाले थे, मैं अकेला था, वो बहुत लोग थे, लेकिन मेरा उंगली टूट गया था इसलिए शरीर भंग होने की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो ये मैं समझ में आया कि आपने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, खुदा अच्छा ही करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैं तो बच गया लेकिन तुम जेल में जाकर उधर चक्की पीसते रहे तो तुम्हारा कैसा अच्छा हुआ। अरे बोलते महाराज हमेशा शिकार के लिए आप मुझको लेके जाते हैं, और अगर आप मुझे लेके जाते तो आपकी तो उंगली कटी थी आप बच जाते, लेकिन मैं तो पूरा था ना मुझे काट लेते वो, तो आपने जेल में डाल दिया तो भगवान की अरेंजमेंट थी कि मैं बचूं। तो इस तरह से समझाया बीरबल ने अकबर को कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब होता है तब पता नहीं चलता है कि अच्छा कैसे है ये। तो उस समय जब पता नहीं चल रहा है कि अच्छा कैसे है, बुरा लग रहा है लेकिन अच्छा कैसे है पता नहीं है, तब तो ज्ञान के आधार पर उसको समझना चाहिए कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि जो होता है वो अच्छा होता है, भले वो समझ में ना आए फिर भी वो अच्छा है। कल परसों वर्षों चार दिन के बाद में समझ में आएगा तो बात अच्छी है, लेकिन आज अगर समझ में नहीं भी आया तो पूर्व अनुभव के अनुसार हमको ये समझना चाहिए कि समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन अच्छे के लिए है। ऐसे कभी कभी चार दिन के बाद समझता है, कभी 40 साल के बाद में समझता है कि कैसे अच्छा था ये। ये बहुत बड़ी बात है बंधु महंती के जीवन में। हम सोचते हैं कि बचपन में हमारा ऐसा हो गया तब से जिंदगी खराब हो गई हमारी, ये बचपन बीमार नहीं पड़ता ना तो कितना अच्छा होता, अभी पूरी बीमारी तो वो कमजोर शरीर लेकर जीवन भर जिए हम लोग। ऐसा कई चीजें घटनाएं जीवन में होती है समझ में आता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन अगर भगवान में श्रद्धा है तो हमारे सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम में लिखते हैं कि ऑल द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ टर्न आउट टू बी गुड फॉर दोज हु आर डिवोटीज ऑफ गॉड हु लव गॉड। सारी जो खतरनाक दर्दनाक घटनाएं होती है वो उसका रूपांतर भक्त के हित में होता है, उसके हित में होता है जो भगवान पर प्रेम करते हैं। दोबारा एक बार सुन लो, ऑल द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ टर्न आउट टू बी गुड फॉर दोज हु लव गॉड। तो हमें केवल एक ही काम करना है, हमें भगवान पर प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, उसको बुरा होया या अच्छा हो गया छोड़ देना नहीं है। हाँ अब कोरोना का काल है, मैंने आपको बताया ना कोरोना का काल है, बहुत लोगों के आमदनियां कम हो गई है, बहुत लोगों के लॉस हो गए हैं, बहुत लोगों के मार्केट में पैसा था वो भी कम वैल्यू का हो गया है, बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, नौकरियां चली गई है, कुछ कुछ बेचना पड़ रहा है, जेवर भी बेच रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कैसे अच्छे के लिए हो रहा है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन श्रद्धापूर्वक इसका सामना करना चाहिए, हिम्मत को नहीं खोना चाहिए, संयम को नहीं खोना चाहिए, विश्वास को नहीं खोना चाहिए। तुम आशा और विश्वास हमारे, वो आशा भी आप ही हो और विश्वास भी आप ही आप पर ही है। बंधु मोहंती का ऐसा था, बंधु मोहंती कभी रोया नहीं, हे भगवान क्यों ऐसे कर रहे हो, मेरे बिजनेस को फ्लॉप कर रहे हो, मैंने क्या आपका बुरा किया था, मैं जीवन भर आपका भजन करता रहा और आप मेरा ही बिजनेस चौपट कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं बोला। इत्मीनान से श्रद्धा के साथ मैं रोज बताता रहा, इत्मीनान से निर्णय भी लिया, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं किया, कभी नाराज नहीं हुआ भगवान के ऊपर, कभी श्रद्धा नहीं उड़ी उसकी भगवान के ऊपर। क्योंकि भगवान जो है ना वो ऐसा महीन प्लानिंग बनाते हैं शुरू में कष्ट होता है, बुखार आने पर दवाई कड़वी मिलती है, लेकिन कड़वी दवा खाने पर बाद में बुखार उतर जाता है और आरोग्य प्राप्त होता है। तो भक्तों के जिंदगी में कभी कभी कष्ट आता है, लेकिन जो कष्ट आता है वो आने वाले बड़े आनंद की व्यवस्था होती है, वो आने वाले बड़े आनंद की फीस होती है। वो छोटी सी दर्द की फीस देते हम और बड़े आनंद का पैमान करते हैं। थोड़े दिन बिजनेस फ्लॉप हो गया, दो दिन भूखे रहे, लेकिन जिंदगी भर 56 भोग खाने का भाग्य प्राप्त हुआ, वो भी महल में रहते हुए सम्मान के साथ। साक्षात भगवान ने जाकर राजा को चेतावनी दिया सपने में। देखो क्या करते हैं भगवान। कुछ उम्मीद थी क्या बंधु मोहंती को, कि बंधु मोहंती को इतना विश्वास था कि बंधु मोहंती सोच रहे भगवान जाएंगे और राजा को डांट के आएंगे। ये सोचना भी गलत है, बोले पागल का सोचना है ये, कि राजा के सपने में जाएंगे, हमारे भगवान खुद जाएंगे, हाँ, और खुद आएंगे थाली लेकर, ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्नश्चिन्तयन्तो माम योजना परिपास्यते। जो मेरा अनन्य भजन करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसका क्या कम है वो पूरा उसको पूरा करते हैं, जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। योग और क्षेम दोनों दोनों का देखभाल करते हैं। इसलिए हमको चिंता नहीं करना चाहिए। जो भगवान का नाम लेते हैं ना, उनको वो ऐसा श्रद्धा को डावाडोल नहीं करना चाहिए, होगा क्या होगा क्या होगा क्या शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम लेने वालों को पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे भगवान हमारे पीछे हैं, वो कभी भी हमारा नुकसान नहीं करेंगे। तो ये विशेष रूप से लागू क्यों है, जो कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना का काल देखो, जो श्रद्धालु हैं जो भगवान का नाम लेते हैं वो आनंद में अभी भी आनंद में है। जो लोग भगवान के भक्त नहीं है वो मानसिक दृष्टि से पीड़ित हो गए हैं, धन से पीड़ित है, तन से पीड़ित है, मन से पीड़ित है, सबसे पीड़ित है। तो फर्क की खाली एक ही चीज का है, श्रद्धा का और प्रेम का। भगवान पर श्रद्धा और प्रेम होगा तो आपके जीवन में कठिन से कठिन काल में भी आनंद होगा। और गिरिराज महाराज ने मुझे अभी आपको शायद दोबारा बता रहा हूं मैं ये बात, हमने कहा था उनको, महाराज अभी आपको धन को आसक्ति की बात कर रहे हैं, अभी धन है ही नहीं, अभी आसक्ति किससे करना है। बोले डोंट वरी, भक्त लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे, भक्तों को भगवान हमेशा कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे। हाँ, रेगिस्तान में भी आप ओएसिस के अंदर रहोगे, भगवान वहां पर भी खड़ा कर देंगे। और भक्त होंगे तो टिम्बकटू में जाके मरेंगे तो वहीं पर भी कोई आएगा आपको भगवान का नाम याद दिलाने के लिए, एंड ऑफ लाइफ केयर देने के लिए। हाँ, तो ये श्रद्धा हमको होनी चाहिए। भगवान का जो भक्तिमय जीवन है ना, इसका जगन्नाथ जी ने कई बार उसका प्रमाण दिया है, कई कई बार। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी अच्छा कैसे होता है, देखिए वो हमारे जयदेव जी ब्रह्मचारी बनकर जगन्नाथपुरी में आए थे बेचारे, आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए, बड़े विरक्त थे वैसे पहले भाव से। तो ये अपने कुटी में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी मुझे अच्छी तरह आपकी सेवा में लगा दो और मुझे ब्रह्मचार्य का पालन करवा दो। तो रह रहे हैं अपने आराम से फर्स्ट क्लास। तो इधर एक ब्राह्मण है, वो जाके रोज जगन्नाथ को प्रार्थना कर रहा है, जगन्नाथ जी मेरी पद्मावती नाम की सुंदर बेटी है, उसका विवाह का इंतजाम करो, अच्छा कोई वर दो, जो भक्त है कोई उसको अच्छा वर दो, अच्छा वर ढूंढ के निकालो, ऐसे ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो अभी भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, तो वो भगवान ने स्वप्न दिया ब्राह्मण को और बताया कि इधर ना जयदेव नाम का ब्राह्मण आया है, कुटी में रहता है, कल सवेरे उसके पास चला जा अपनी कन्या को लेकर और बता देना कि जगन्नाथ की आज्ञा हुई है मुझे, मेरी बेटी आपको देना है, आपको विवाह में देना है। और उधर जाके जयदेव भी सपने में आए रात को, बोले कल सवेरे तुम्हारे घर पे ब्राह्मण आएगा, अपनी कन्या को लेकर आएगा, उसको स्वीकार करके विवाह कर लेना उसके साथ। तो जयदेव जी भगवान को बोल रहे, जगन्नाथ जी मैं तो ब्रह्मचारी बनने के लिए आया था, मुझे क्यों विवाह के बंधन में फंसा रहे हो, नहीं नहीं तुम्हारे लिए ये अच्छा है। तभी वो सोचते रहे क्या मैं किस भगवान के चक्कर में फंस गया, मुझे करना था ब्रह्मचारी पालन और ये जगन्नाथ भगवान तो विचित्र भगवान है, मैं जो चाहता हूँ ब्रह्मचारी रहूँ तो ये मुझे विवाह में अटका रहे हैं, क्या बात है। तो कोई व्यक्ति तो छोड़ गया था निकल के, चलो ये जगन्नाथ जी अच्छे ने हम आए और कहीं जाके राम की भजन करेंगे, नहीं उसने तुरंत हाँ कर लिया, भगवान की आज्ञा थी तो स्वीकार कर लिया, बड़े अच्छे भक्त थे वो। अगले दिन वो आ गए, पिताजी आप ही हो क्या जयदेव जी, हाँ हाँ ये मेरी बेटी पद्मावती आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ विवाह में देने के लिए। तो विवाहित हो गए वो, हाँ ब्रह्मचारी बनने के लिए आए थे, विवाहित हो गए। और एक एक घटना हो गई, हाँ उनके मन के खिलाफ हो गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पद्मावती बड़ी अच्छी भक्त थी भगवान की। तो कुछ दिन बाद स्वप्न में आके बोलते हैं कि अभी आप नवद्वीप चले जाओ। तो बोला क्यों, आप नाराज है हमसे क्या, जगन्नाथपुरी में रहने को नहीं दे रहे? नहीं नहीं आप वहां चले जाओ, वहां पर आपको बहुत कृपा होगी। तो वहां चले गए और चंपाहाटी में रहने लगे। हाँ तो वहां पर दृष्टांत होते रहे उनको, उन्होंने गीत गोविंद लिखा, वहां पर दशावतार स्तोत्र लिखा। फिर वापस वहां पर राधा माधव जी का पूजन कर रहे थे तो राधा माधव जी प्रकट हो गए उनके लिए। हाँ दर्शन दिया उन्होंने उनको, बड़ा धन्यवाद करने लगे उनको और वहीं पर रह गए। फिर एक बार राधा माधव जी प्रकट हो गए, बोले आप जगन्नाथपुरी चले जाओ। तो तब तक नवद्वीप धाम का इतना आकर्षण मन में हुआ था, तो माधव जी समझा रहे, अरे बाबा मैं ही जगन्नाथ हूँ, मैं तुम्हारा गीत गोविंद सुनूंगा वहां पर, आप मुझे आप चले जाओ वहां पर। तो फिर वो दोबारा जगन्नाथपुरी गए और भगवान को गीत गोविंद सुनाते रहे 8वीं सदी में। तो बाहरी दृष्टि से कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो मन के पसंद नहीं है, मन को एक अच्छा लग रहा है और बाहर कुछ हो रहा है, भगवान भी कुछ अलग ही करा रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे तो आगे आगे क्या कृपा छुपी हुई है उसके अंदर सब पता चलेगा आपको। तो जगन्नाथपुरी में आकर जगन्नाथ को बहुत आनंद दिया जयदेव जी ने, और चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिया उनको। उन्होंने कहा कि आगे जाकर मैं जब आऊंगा तभी तुम्हारे गीत गोविंद को मैं सुनूंगा, मुझे बड़ा बड़ा प्रिय रहेगा ये। तो हर एक भक्त के जीवन में जगन्नाथ जी ने ऐसे चमत्कार किए हैं कि शुरुआत में पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब श्रद्धा से उसके अंदर स्वीकार किया तो बड़े बड़े कृपा के भंडार खुल गए उनके। तो ये सब हमारे जीवन में जरूरी है। कौन से संत ऐसे हैं जिनके जीवन में कष्ट नहीं हुआ? देखो आप तुकाराम महाराज देखो, आप नामदेव सिंपी को देखो, आप सब किसका नाम लेना उसको ले लो, हरिदास ठाकुर को देखो, सनातन गोस्वामी को देखो, रूप गोस्वामी को देखो, कितने कष्ट हुए। जीव गोस्वामी को देखो, इतना आतंक का सहन किया उन्होंने। तो कोई भी जो होता है ना हीरा, उसको पहलू डालने के बिना वो चमकता नहीं है, और वो पहलू डालने के लिए ना उसको काटने के लिए बहुत कष्ट होता है हीरे को। हीरे को चमकाने के लिए बहुत कष्ट हीरे को सहन करना पड़ता है। सोने को चमकने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन अग्नि परीक्षा देने के बाद जो सोने का चमक होती है ना, तो वो कह रहेगा धन्य है अग्नि परीक्षा, तो मेरा इतना तेज प्रकट कर दिया उसने। तो अंदर का तेज, आत्मा का तेज अगर प्रकट करना है तो जीव को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और अग्नि परीक्षा जीव के लिए अच्छी होती है, उसमें परम कल्याण छुपा हुआ रहता है। ये सब श्रद्धा की बातें, हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो श्रद्धा नहीं है तो सब कुछ बेकार है, श्रद्धा है तो सब अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है। तो आइए जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करें, वंदन करें और प्रार्थना करें कि हम आपके हैं। हाँ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। दोबारा सुन लो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, भूतकाल, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, वर्तमान काल, हम तुम्हारे ही रहेंगे भविष्यकाल ओ मेरे घनश्याम। ये जीवन का आनंद का सूत्र है, जो व्यक्ति इस सूत्र को अपना सकता है, जगन्नाथ तो उसी के हैं। और जगन्नाथ जी राम जी के रूप में आए थे तो उन्होंने वादा किया था ना, अरे एक बार तवास्मिति बोलेगा ना कोई मुझे एक बार, तो वो व्यक्ति भूल जाएगा कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा हूं। लेकिन भगवान नहीं भूलते। मतलब क्या कह रहा हूँ, हम लोग इतने भुलक्कड़ लोग हैं, कभी भाव में आकर जगन्नाथ हमने बोल देंगे या मंदिर में आके बोल देंगे भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका ही हूँ, ऐसे भाव में आके बोल देंगे। कल जाके भाव उतर जाएगा तो सब भूल जाएंगे क्या बोला था भगवान के लिए, फिर माया के बन जाएंगे दूसरे दिन। हाँ लेकिन एक बार अगर सिंसियरली भगवान के सामने खड़े होकर आपने कह दिया है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, ट्राई तो करके देख लीजिए, मैं आपका हूँ, तो आप शायद भूल जाएंगे लेकिन भगवान जन्म जन्मांतर तक, ये जन्म समाप्त होने पर अगले जन्म में भी नहीं भूलेंगे कि पिछले जन्म में ये बंदे ने मुझे मैं आपका हूं ऐसे कहा था। हाँ और हमारे ठाकुर भक्तिविनोद कहते ना, तुमी तो आमार आमी तो तोमार, मैं आपका आप है मेरे। यही हमारे जीवन का सार है, भगवान को अपना बना लेंगे तो भगवान आपको उनका बना लेंगे, और जीवन में क्या चाहिए, है ना। और राजा भी ऐसा ही था, राजा ने जीवन भर दिन भर अपने बर्थडे के दिन सबको दान मांगे। हाँ, तो एक बुढ़िया औरत थी, वो दूर पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो राजा ने सबको दान बुला बुला के दिया, और बुढ़िया उधर ही खड़ी रही पेड़ के नीचे, सामने आई नहीं। सबका सूर्यास्त हो गया, दान देना समाप्त हो गया, तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया, अरे भैया आप तो आए ही नहीं पूछने के लिए, क्या दूं बताओ, मेरा जन्म आज बर्थडे है, क्या दूं आपको। तो मैया बोलते, नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए, वो ठीक है, नहीं 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 ऐसा नहीं, मेरा बर्थडे है, आपको बोलना ही पड़ेगा, क्या चाहिए आपको बताओ, मैं देना चाहता हूँ आपको। तो क्या बोलती है बुढ़िया, मेरा बेटा बन जाओ, मेरा बेटा बन जाओ। अरे ठीक है मैया, चरणों को स्पर्श करता हूँ, आज से मैं आपका बेटा हूँ। ठीक है, मैया चली गई, राजा अपने महल में चला गया, मैया झोपड़ी में चली गई। नेक्स्ट डे राजा प्रधानमंत्री को क्या बोलता है, मुझे मेरे मैया के घर जाना है, जाओ जरा देख के आओ कहाँ रहती है वो। तो प्रधानमंत्री गया और देख के आया कि कोई बीच गांव में कहीं कच्ची सड़क है, पूरा मट्टी बनी हुई है, वहाँ पर एक झोपड़ी है टूटी फूटी सी, वहाँ पर एक कैसा दो चार बर्तन घर पे पड़े हैं, बहुत गरीब है। सब रिपोर्ट राजा को दे दिया, राजा बोला जाओ मेरे महल से उसके उसके घर तक पूरा हाईवे बना दो, हाँ राजमार्ग बना दो, और झोपड़ी को उखाड़ दो, और एक बढ़िया सा महल बना दो, बहुत कमरे होने चाहिए उसके अंदर, रसोई होनी चाहिए, और दासियां भेज दो उधर बहुत सारे, अच्छे अच्छे वस्त्र भेज दो, अलंकार भेज दो, भंडार भर दो धन के, और तब हम माँ के मिलने जाएंगे। मतलब ये सब खबर क्यों पूछा था, माँ से मिलने जाना है ना अभी, तो माँ से मिलने जाने के लिए अपनी तरफ से योग्यता होनी चाहिए। तो पूरा रास्ता बना दिया, महल बना दिया, कमरे बना दिए, अलंकार भेज दिए, खाना भेज दिया, वस्त्र भेज दिए, पूरा चमका दिया चकाचक, और फिर राजा अपनी माँ को मिलने गया। हाँ, क्या मांगा उसने, कुछ नहीं मांगा, बोला बेटा बन जाओ खाली, बस मेरा बन जाओ। राजा बोला ठीक है आपका बन जाता हूँ, बेटा बन जाता हूँ। लेकिन एक राजा बेटा बनना मतलब क्या होता है, सारी समस्याओं का समाधान हो गया आपका, है ना। ऐसा नहीं बोला, मैया क्या चाहिए आपको, मुझे एक पांच तोले का सोने का गहना दे दो, बस आज की तारीख में उतना ही अच्छा है बर्थडे के लिए। तो राजा ने दे दिया होता पांच तोले का सोने का गहना, लेकिन मैया क्या बोली, मेरा बेटा बन जाओ। हाँ, तो भगवान को ना अपना बना लो, और भगवान कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, भगवान को अपना बना लो, जगन्नाथ को अपना बना लो, एक बार बोल के तो देखो, फिर देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। हम लोग सोच रहे हैं पैसे नहीं है, बहुत इनकम कम हो गया है, बहुत इधर कष्ट शुरू हो गया, पता नहीं कब सुधरेगा स्थिति, कभी सुधरेगी, कब नॉर्मल हो जाएगी। डोंट वरी, जिसको जिस व्यक्तियों जिन व्यक्तियों ने भगवान को अपना बना लिया है, भगवान ने उनको स्वीकार किया है, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अप एंड डाउन हो जाएगा, एक आधी उंगली कट जाएगी, लेकिन आगे जिंदगी बचेगी आपकी, उंगली कटेगी तो, है ना। तो श्रद्धा के साथ में इतना हमने पूरा दिन जगन्नाथ का कथा सुनी, क्या सुनकर पाया हमने, यही पाया कि हमें भगवान पर विश्वास, वो हमने अधिक तौर पर पाया, और अधिक मात्रा में भगवान पर विश्वास पाया कि भगवान कैसे लीलाधारी हैं, और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, दीन जनता पर कृपा करने के लिए क्या क्या नहीं करते भगवान, क्या क्या चमत्कार नहीं करते हैं। खाली श्रद्धा होनी चाहिए बस। अभी बुढ़िया देखो, बुढ़िया आई बेचारी, इतने प्रेम से खीर लेकर आई थी, तो ठुकरा दिया उसको, भगा दिया गया। एक तरफ से सोचती होगी कैसे जगन्नाथ भगवान है, इनके लिए मैं खिचड़ी लेके आई थी, इन्होंने अपने सेवकों के द्वारा भगा दिया मुझे पूरा। थोड़ा कष्ट हुआ ना उसको, रोना 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 पड़ा, आंखों से आंसू आए, बहुत नाराज हो गई, रोती रही घर पे जाके। लेकिन भगवान ने कैसा कृपा किया, अरे तुम मुझे अगर देती ना तो ये पुजारी वहां पर भोग लगाते मुझे, लेकिन वो आनंद नहीं आता तुम्हारे घर पे आके दो दो हाथ से खाने का गरम गरम, झोपड़ी में बैठ के तू और मैं और कोई नहीं बीच में। हाँ, तो भगवान ने वो बाहर बाहर का खिचड़ी को भगा दिया उनको, और घर जाके दोनों हाथ से खिचड़ी खाया। सोचो कोई नहीं था बीच में, बुढ़िया और भगवान, बस कर्मा बाई और भगवान थे उसमें। तो भगवान ने अच्छा किया कि बुरा किया, जब उसको भगा दिया अच्छा किया, अपने घर जाने का रास्ता क्लियर कर दिया भगवान ने, है ना। ऐसे कितनी कहानियां है भगवान की, लगता है कि बुरा कर रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा देर सहन कर लो, कर्मा बाई ने थोड़ी देर तक अश्रु सहन कर लिए, उसके बाद में प्रत्यक्ष घर में आकर टाट पर बैठकर दोनों हाथ से खिचड़ी खाया गरम गरम, और जिंदगी भर का खिचड़ी का इंतजाम कर दिया, बोलो जिंदगी भर का सेवा का व्यवस्था कर दिया। तो ये जो लीला है भगवान की ना, ये समझना थोड़ा देर लगती है, और हो सकता है कि हमको सब बार हर बार समझ में नहीं आएगा लीला क्या है, लेकिन एक बार समझ में आया ना तो जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि जो करते हैं अच्छा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार प्रसाद का दिल भर के दर्शन कर लो, प्रसाद पा लो, अपने आप को संतुष्ट कर लो, प्रार्थना कर लो, और फिर ये पंचतीर्थों का दर्शन करके अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय जगन्नाथ भगवान की जय हो।